आगे सबक देखिए भाई, फसलुन इदा अमन रजुलुन हुर्रुन अव इमरातुन हुर्रतुन काफिरन औ जमाअतन औ अहल हिस्निन औ मदीनतिन सह अमानुहुम वलम यकुन लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन किताल्हुम वल असलु फीही कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम अल मुस्लिमून तताकाफ़ दिमाउहुम व यसअ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर हम बाबू कैफियतिल किताल पढ़ रहे थे, साहिब हिदाया किताल का और जिहाद का तरीका बयान फरमा रहे थे। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि मुसलमान मुजाहिदीन जो हैं, जब किसी इलाके पर हमला आवर हों और किसी शहर को या किसी किले को घेरे में ले लें, तो फिर फौरन ही उन पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि वो पहले दुश्मन को इस्लाम की तरफ दावत देंगे। अगर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो फिर उनके साथ लड़ाई नहीं की जाएगी, और अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो फिर उनको जिजिया अदा करने की तरफ बुलाया जाएगा कि जिजिया अदा करो। अगर उन्होंने जिजिया को कबूल कर लिया तो उनके भी वही हुकूक होंगे जो मुसलमानों के हुकूक हैं, यानी जैसे ममलिकत इस्लामिया के अंदर मुसलमान की जान और माल महफूज हैं, इसी तरह उन जिम्मियों का जान और माल भी महफूज होगा भाई। और साहिब हिदाया ने यह भी बयान फरमाया कि अगर दुश्मन को इससे पहले इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, फिर तो इमाम के लिए जायज ही नहीं है उनसे लड़ाई करना, जब तक इमाम उनको दावत ना दे दे भाई। इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम जो हैं लश्कर के जो अमीर होते थे, उनको ये ही वसीयत फरमाया करते थे कि कुफार को ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत की तरफ दावत देना, और नीज इस दावत की वजह से उन कुफार को भी पता चल जाएगा कि हम उनके साथ दीन की वजह से लड़ने आए हैं, माल वगैरह छीनने के लिए नहीं। तो हो सकता है वो इस दावत को कबूल कर लें और मुसलमान हो जाएं, तो जंग की मशक्कत से सब लोग बच जाएंगे भाई। और अगर इमाम ने उनके साथ लड़ाई की बगैर दावत दिए ही, तो फिर इस सूरत में वो गुनाहगार होगा भाई। अलबत्ता जमान वगैरह नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर दुश्मन की जानों और मालों की इस्मत नहीं है। जानों और मालों की इस्मत जो है वो दो चीजों की वजह से आती है, या तो दीन की वजह से या दारुल इस्लाम की वजह से। जो मुसलमान हैं उनकी जान और माल महफूज होती है, चाहे वो ममलिकत इस्लामिया में हो चाहे वो दारुल हर्ब में हो, और जिम्मी जो हैं उनकी भी जान और माल महफूज होती है क्योंकि वो दारुल इस्लाम के अंदर रहते हैं। तो जान और माल की हिफाजत के लिए या तो ईमान होना चाहिए या दारुल इस्लाम होना चाहिए, और दुश्मन के पास ना तो ईमान और इस्लाम है और ना वो दारुल इस्लाम है, लिहाजा अगर उनसे जंग की जाए बगैर दावत के तो इमाम गुनाहगार तो होगा, अलबत्ता जमान वगैरह नहीं आएगा क्योंकि उन दुश्मन की जानों और मालों की इस्मत नहीं है भाई। और अगर दुश्मन को इस्लाम की दावत पहले से पहुंच चुकी है, फिर भी मुस्तहब यह है कि इमाम जो है उनको इस्लाम की दावत दे, लेकिन यह वाजिब नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनुल मुस्तलिक पर हमला फरमाया था और वो बनुल मुस्तलिक वाले गफलत में थे। वजह यह कि उनको इस्लाम की दावत पहले से ही पहुंच चुकी थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनको दावत नहीं दी। मालूम हुआ दोबारा दावत देना वाजिब नहीं है भाई। तो इमाम जो है पहले दुश्मनों को इस्लाम की दावत देगा, और अगर वो इनकार करते हैं फिर जिजिया की तरफ बुलाएगा, अगर वो जिजिया कबूल करने से भी इनकार करें तो फिर इमाम अल्लाह की मदद तलब करते हुए उन मुशरिकीन पर हमला कर देगा। फिर जंग के अंदर हर वो तरीका जायज है जिसके जरिए दुश्मन की कुव्वत को खत्म किया जा सके, उनकी जमईयत को टुकड़े टुकड़े किया जा सके भाई। चुनाचे मुसलमानों के लिए जायज है कि मंजनीकों के जरिए उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाएं, मुसलमानों के लिए जायज है कि उनके ऊपर दरिया का या बंद का पानी छोड़ दें, उनकी जमीनों वगैरह को उसमें गर्क कर दें, मुसलमानों के लिए जायज है कि उनके दरख्तों को काट दें, उनकी फसलों को तबाह कर दें या उनको आग लगा दें, इसलिए क्योंकि इन सब चीजों की वजह से दुश्मन की कुव्वत खत्म हो जाएगी भाई। और फिर आपने यह भी मसला पढ़ा कि अगर उन दुश्मनों के पास कोई मुसलमान कैदी मौजूद है या वहां पर कोई मुसलमान ताजिर मौजूद है तो फिर भी उन पर तीर बरसाने में और उन पर पत्थर बरसाने में कोई हर्ज नहीं है, उन पर तीर बरसाना भी जायज और पत्थर बरसाना भी जायज। वजह यह है कि जिहाद के जरिए जरर आम दूर होगा और अगर वो मुसलमान कैदी या ताजिर को नुकसान पहुंचता है तो वो जरर खास है, यानी सिर्फ उन्हीं को नुकसान होगा। तो लिहाजा जरर खास के बजाय जरर आम को दूर करना औला है, लिहाजा मुसलमानों को उन दुश्मनों पर तीरंदाजी और पत्थर फेंकने की इजाजत होगी। और अगर उन कुफार ने मुसलमान बच्चों को या मुसलमान कैदियों को ढाल बना लिया, उनको आगे कर दिया कि अगर आप तीर चलाएंगे या पत्थर फेंकेंगे तो पहले इनको लगेगा, कहते हैं फिर भी मुसलमान तीरंदाजी से और पत्थर फेंकने से नहीं रुकेंगे। अलबत्ता तीर फेंकते हुए या पत्थर फेंकते हुए वो कुफार का इरादा करेंगे भाई, और इसके अंदर अगर मुसलमान कैदियों को या बच्चों को कोई नुकसान भी पहुंचा तो इस सूरत में कोई दियत वगैरह भी नहीं आएगी और कोई कफारा भी नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि जिहाद फर्ज है और फर्ज के अंदर जमान नहीं आ सकता भाई। और नीस मैंने आपको बतलाया था कि हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि अगर दुश्मन के पास मुसलमान कैदी या ताजिर मौजूद हो तो फिर इस सूरत में उन पर तीर वगैरह चलाना जायज नहीं है, और अगर उनको तीर लग गया उस मुसलमान कैदी या ताजिर को तो फिर उस सूरत में जमान भी आएगा, तीर मारने वाले पर जमान आएगा। और उन्होंने इसको कियास किया था भूख की हालत पर, जैसे भूख की हालत में अपनी जान बचाने के लिए एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का माल खाना जायज है लेकिन उस पर जमान आता है भाई, उसको जमान देना पड़ेगा जितना माल उसने खाया है। इसी तरह जिहाद के अंदर भी अगर जरूरत की वजह से तीरंदाजी की इजाजत दी गई है तो उसकी वजह से अगर किसी मुसलमान का नुकसान होगा तो उसका जमान देना पड़ेगा। तो उसका भी जवाब दिया था कि जिहाद की हालत को भूख की हालत पर कयास नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि भूख की हालत में इहयाए नफ्स है, नफ्स को बचाना है, नफ्स को जिंदगी देना है, और जिहाद के अंदर इतलाफ नफ्स है, नफ्स को हलाक करना है, और इहयाए नफ्स के लिए तो इंसान जमान देने पर राजी हो जाता है कि उसकी जान बच रही है तो वह जमान देने पर राजी होगा भाई, लेकिन इतलाफ नफ्स के अंदर कि किसी दूसरे को हलाक करे तो उसके अंदर अगर जमान आएगा तो मुजाहिद तो जमान के खौफ से जिहाद से ही रुक जाएगा भाई। लिहाजा जिहाद के अंदर अगर मुसलमान कैदी या ताजिर को नुकसान पहुंचा तो उसका कोई जमान नहीं आएगा मुजाहिदीन पर। और फिर साहिबे हिदाय ने यह भी बतलाया कि अगर मुसलमानों का लश्कर बड़ा हो तो उसमें बूढ़ी औरतें भी जिहाद के लिए निकल सकती हैं और उसके अंदर कुरान को भी लेकर मुजाहिदीन निकल सकते हैं, लेकिन अगर मुजाहिदीन का छोटा दस्ता है तो फिर उसके अंदर औरतें भी नहीं निकलेंगी और उसके अंदर वह कुरान को लेकर भी नहीं निकल सकते, इसलिए क्योंकि अगर यह कुरान दुश्मन के हाथ आ गया फिर तो वह इस कुरान की तौहीन करेंगे मुसलमानों को गजबनाक करने के लिए भाई। और ये बूढ़ी औरतें जब बड़े लश्कर के साथ निकली तो जो काम इनके मुनासिब हुआ ये वो काम सरंजाम देंगी, जैसे खाना पकाना है या पानी पिलाना है या जख्मियों की देखभाल करना है और उनका इलाज मुआलजा करना है। अलबत्ता ये लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि अगर ये लड़ाई में हिस्सा लेंगी तो इसे दुश्मन दलील पकड़ेगा कि मालूम हुआ मुसलमान कमजोर हो गए हैं, उनके पास मर्द ही बाकी नहीं है लड़ने वाले, अब उनकी औरतें लड़ने के लिए आ रही हैं, तो लिहाजा औरतें जो हैं बगैर जरूरत के लड़ाई के अंदर हिस्सा नहीं लेंगी भाई। और साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि वैसे तो औरत के लिए खावंद की इजाजत के बगैर और गुलाम के लिए आका की इजाजत के बगैर जिहाद के लिए निकलना जायज नहीं, लेकिन अगर दुश्मन किसी इलाके पर किसी शहर पर हमला कर दे तो फिर उस इलाके वालों पर जिहाद फर्ज ऐन हो जाता है, तो फिर औरत खावंद की इजाजत के बगैर लड़ाई के लिए निकल सकती है और इसी तरह गुलाम जो है आका की इजाजत के बगैर लड़ाई के लिए निकल सकता है। और साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि जिहाद के अंदर मुसलमानों को धोखा नहीं देना चाहिए, बदहदी नहीं करनी चाहिए, अगर उनको फार से कोई मुआहिदा हुआ है तो उस मुआहिदे को नहीं तोड़ना चाहिए, और नीज जिहाद के अंदर मुसलमानों को माल गनीमत के अंदर खयानत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मुसला करने से भी शरीयत ने मना फरमाया है कि दुश्मन को कत्ल करने के बाद उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए, उसकी आंखें फोड़ दी जाए, कान काट दिए जाए, होंठ काट दिए दिए जाए, नाक काट दी जाए, इसको मुसला कहते हैं और शरीयत ने इसे मना फरमाया है भाई। और साहिब हिदाय ने जिहाद का एक और जाब्ता भी जिक्र फरमाया कि जिहाद के अंदर दुश्मन की औरतों को या बच्चों को या बहुत बूढ़े अफराद जो हैं या उनमें जो अपाहज और अंधे हैं उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये लोग जंग नहीं कर सकते। जब ये जंग नहीं कर सकते तो इनका कत्ल करना भी जायज नहीं होगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो हैं बूढ़े शख्स और अपाहज और अंधे के बारे में इख्तिलाफ करते हैं, वो फरमाते हैं ये भी काफिर हैं लिहाजा इनका कत्ल भी जायज होगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, कत्ल को मुबाह करने वाली चीज जो है वो जंग है और ये लोग जंग नहीं कर सकते लिहाजा इनका कत्ल भी जायज नहीं होगा भाई। हां अलबत्ता अगर ये जो बूढ़ा है या अपाहज है या अंधा है इनकी जंगी मामलात के अंदर राय है और ये जंगी उमूर के माहिर हैं और कुफार इनके मशवरे पर चलते हैं तो फिर इस सूरत में इनको भी कत्ल किया जा सकता है। या औरत अगर इनकी मलिका है तो फिर औरत को भी कत्ल किया जा सकता है, इसलिए कि पूरी कौम को लड़ाई पर उभारने वाला और तैयार करने वाला वो बादशाह या मलिका ही होती है। तो लिहाजा अगर औरत मलिका है तो उसको भी कत्ल किया जा सकता है भाई। और नीज दुश्मन के बच्चे और मजनून को वैसे तो कत्ल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये लड़ाई के अंदर शामिल हैं, ये बच्चा या मजनून लड़ रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो फिर इनको भी कत्ल किया जा सकता है। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर किसी शख्स के मुकाबले में उसका बाप आ जाए जो मुश्रिकीन की तरफ से लड़ने के लिए आया है तो फिर इस शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि बाप को खुद न कत्ल करना पड़े भाई, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। तो ये कोशिश करे कि किसी तरह इसे ये गुनाह का काम सरंजाम न देना पड़े। लेकिन अगर मजबूरी हो जाए कि बाप उसके सामने आ गया और बाप उसे अब कत्ल करना चाहता है तो अब जान बचाने की और कोई सूरत नहीं सिवाय इसके कि बाप को वो कत्ल कर दे, तो इस सूरत में फिर उसके लिए बाप का कत्ल जायज होगा। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे मुसलमान बाप जो है अपने बेटे पर तलवार निकाल ले और उसे कत्ल करना चाहे और बेटे के लिए अपनी जान बचाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि वो अपने बाप को कत्ल कर दे, तो फिर उस बेटे के लिए बाप का कत्ल जायज हो जाता है। तो जब इस हालत में मुसलमान बाप का कत्ल जायज है तो मुशरिक बाप का कत्ल बतरीके औला जायज होगा इस सूरत के अंदर। और फिर उसके बाद हमने बाबुल मुआदाती व मैं यजूजु अमानुहू शुरू किया था। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर इमाम की राय यह हो कि दुश्मन से सुलह कर ली जाए तो इसमें मुसलमानों का फायदा है, तो इमाम जो है दुश्मन के साथ सुलह कर सकता है। और अगर कुछ मुद्दत के बाद इमाम की राय यह हुई कि अब अगर हम सुलह पर चलते रहेंगे तो मुसलमानों का नुकसान होगा, अब मुआहिदे को तोड़ने में मुसलमानों का फायदा है, तो फिर इमाम जो है मुआहिदा तोड़ भी सकता है। लेकिन इसमें भी इमाम के लिए दुश्मन को धोखा देना जायज नहीं, लिहाजा इमाम अगर मुआहिदा तोड़ना चाहता है तो दुश्मन को मुआहिदा तोड़ने की इत्तला देगा और इत्तला देने के बाद फौरन ही इमाम उन पर हमला नहीं करेगा बल्कि इतनी मुद्दत इंतजार करेगा कि जिसके अंदर यह मुआहिदा टूटने की खबर सारे दुश्मनों तक पहुंच जाए भाई, सारे दुश्मनों तक, फिर उसके बाद इमाम उन पर हमला कर सकता है। और अगर अहद शिकनी की इब्तिदा दुश्मन ने की है यानी दुश्मन ने मुआहिदा तोड़ा है तो फिर इस सूरत में अब इमाम उन पर हमला कर सकता है, अब उनको मुआहिदा तोड़ने की इत्तला देने की जरूरत नहीं क्योंकि मुआहिदा तो खुद दुश्मन ही तोड़ चुका है भाई। और साहिब हिदाय ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि जिस तरह इमाम के लिए बगैर माल के सुलह करना जायज है इसी तरह इमाम के लिए माल लेकर भी सुलह करना जायज है जबकि मुसलमानों को उसकी हाजत हो। मुसलमानों को अगर माल की हाजत है तो इमाम दुश्मनों से माल लेकर उनसे सुलह कर सकता है, लेकिन अगर मुसलमानों को माल की हाजत नहीं है तो फिर माल लेकर सुलह करना इमाम के लिए जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो जिहाद किया जा रहा है ये एला एक कलिमतुल्लाह के लिए है, माल लेने के लिए ये जिहाद नहीं किया जा रहा भाई। और फिर साहिब हिदाय ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि मुसलमानों में से अगर कुछ लोग मुर्तद हो गए और फिर उन्होंने किसी शहर पर कब्जा कर लिया तो इमाम के लिए उनके साथ भी सुलह करना जायज है। वजह यह कि इसकी वजह से इनको मोहलत मिल जाएगी तो उम्मीद है शायद ये गौर फिक्र करके दोबारा मुसलमान हो जाएं, तो इस एतबार से इनके साथ सुलह करना जायज, अलबत्ता इसे जिजिया लेना जायज नहीं है भाई। और अगर दुश्मन ने मुसलमानों को घेर लिया और फिर उन्होंने सुलह के बदले मुसलमानों से माल तलब किया, तो इमाम के लिए जायज नहीं है कि दुश्मन को माल दे सुलह के अंदर, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों की जिल्लत है और इसके अंदर मुसलमानों का ऐब दुश्मन के हवाले किया जा रहा है, लिहाजा यह जायज नहीं। हां अगर हलाकत का खौफ है, दुश्मन बहुत ज्यादा ताकत के अंदर है, तो फिर इस सूरत के अंदर हलाकत से बचना तो वाजिब है जिस तरीके से भी हो सके, तो फिर माल देकर भी इमाम सुलह कर सके है भाई। और साहिबे हिदायत ने यह भी बतलाया कि दुश्मन के हाथ असलहा बेचना जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि यह असलहा उनकी कुव्वत का बाइस बनेगा और इसको वो मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अगरचे दुश्मन के साथ सुलह ही क्यों ना हो, फिर भी उन पर असलहा नहीं बेचा जा सकता, इसलिए क्योंकि यह सुलह तो गुजर ही जाएगी या किसी वक्त टूट जाएगी यह सुलह, तो फिर इस सूरत में वो इस कुव्वत को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता गल्ला और कपड़े वगैरह दुश्मन को बेचना जायज है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन इदा अमन रजुलुन हुर्रुन अविमरातुन हुर्रतुन काफिरन औ जमाअतन औ अहल हिस्निन औ मदीनतिन सहा अमानुहुम। इस फसल के अंदर साहिबे हिदाया ये बयान फरमाएंगे कि मुसलमानों की तरफ से कौन कौन कुफार को अमान दे सकता है। साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि हर मोमिन को अल्लाह ने बड़ी ऊंची शान दी है, यहां तक कि अगर एक आजाद मर्द हो या आजाद औरत है वो भी कुफार के पूरे शहर को अमान दे सकती है। तो एक आम मोमिन मर्द या औरत अगर पूरे शहर को भी अमान दे दें तो उस पूरे शहर वालों को अमान मिल जाएगा और मुसलमानों के लिए उनसे लड़ाई करना जायज नहीं होगी। तो कहते हैं फसलुन इदा अमन रजुलुन हुर्रुन अविमरातुन हुर्रतुन, जब अमान दे दे कोई आजाद मर्द अविमरातुन हुर्रतुन या कोई आजाद औरत काफिरन किसी एक काफिर को औ जमातन या काफिरों की जमात को औ अहल हिस्निन या किले वालों को, एक मर्द या औरत है और सारे किले वालों को उसने अमान दे दिया, औ मदीनतिन मदीना का आतफ है हिसन पर और हिसन पर अहल का लफ्ज दाखिल है, तो लिहाजा ये मदीनतिन मजरूर होगा ऐ अहल मदीनतिन। और अगर एक मुसलमान मर्द या औरत पूरे शहर वालों को अमान दे दे सहा अमानुहुम, तो इनका अमान सहीह है भाई। अमानुहुम ये हुम जमीर राजे है कुफार को भाई, इसलिए क्योंकि पीछे जिक्र हुआ अमान देने वाला एक मर्द है या एक औरत है और ये हुम जमीर तो जमा की है, मालूम हुआ अमान मस्दर की इजाफत हो रही है मफूल की तरफ। सहा अमानुहुम उस एक मर्द का इन कुफार को अमान देना सही है। वलम यकुन लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन किताल्हुम, और जायज नहीं है मुसलमानों में से किसी एक के लिए भी किताल्हुम उनसे लड़ाई करना। वल असलु फीहि कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और असल इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि आपने फरमाया अल मुस्लिमून ततकाफ़ दिमाउहुम व यसा बिदिमतिहिम अदनाहुम। भाई हदीस का तर्जमा तवज्जो से सुन लीजिएगा भाई, इसका तर्जमा जरा मुश्किल है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मुस्लिमून ततकाफ़ दिमाउहुम के मुसलमान जो हैं उनके खून बराबर हैं। तकाफा या तकाफा तकाफुअन का माना है बराबर होना। अल मुस्लिमून ततकाफा दिमाउहुम मुसलमानों के खून बराबर हैं, यानी किसास और दियतों के एतबार से, किसास और दियतों के एतबार से तमाम मुसलमानों के खून बराबर हैं, चाहे कोई बड़े आला खानदान से ताल्लुक रखता हो चाहे कोई मामूली खानदान से ताल्लुक रखता हो, सबके खून बराबर हैं किसास और दियतों के मामले में, यानी चाहे आला को कोई जानबूझकर कत्ल करे चाहे अदना को, दोनों सूरतों में किसास आएगा, और चाहे आला को गलती से कत्ल करे या अदना को गलती से कत्ल करे दोनों सूरतों में पूरी दियत आएगी भाई। जबकि मुशरिकीन का तरीका यह था कि उनमें अगर किसी बड़े आदमी को कोई कत्ल कर देता था तो वो किसास के अंदर सिर्फ उस एक आदमी उस कातिल को कत्ल नहीं करते थे बल्कि बदले के तौर पर उस कबीले के कई अफराद को कत्ल करते थे। लेकिन इस्लाम ने बतला दिया कि नहीं, तमाम मुसलमानों का खून बराबर है, चाहे कोई आला खानदान वाला हो चाहे कोई अदना खानदान वाला हो। भाई तो ये माना है अल मुस्लिमूना ततकाफ़ दिमाउहुम, मुसलमान जो हैं उनके खून बराबर हैं। वयसअ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम, हदीस का ये हिस्सा भाई इसका तर्जमा मुश्किल है, ये जरा खूब तवज्जो से समझ लें भाई। साइया यसा का माना होता है कोशिश करना, बिज़िम्मतिहिम याद रखो जिम्मा का माना होता है अमान भाई, अमान या इसी तरह जिम्मेदारी, ये इसी तरह जिम्मा का माना है आहद भाई यानी मुआहिदा करना, और इसी तरह जिम्मा का माना जमान के भी हैं भाई। तो जो तर्जमा आपको मुनासिब लगे, वयसअ बिज़िम्मतिहिम और सई यानी कोशिश कर सकता है, बिज़िम्मतिहिम मुसलमानों की जिम्मेदारी में मुसलमानों के अमान में, अदनाहुम जो उनमें कम से कम है, मुसलमानों के अमान के अंदर जो उनमें से कम है वो भी सही कर सकता है यानी वो भी अमान दे सकता है, यानी मुसलमानों का अमान उनमें से कम है यानी एक फर्द उसके भी हाथ में है, वो मुसलमानों के लिए इस अमान देने में कोशिश कर सकता है और तमाम मुसलमानों पर उस अमान की पाबंदी लाजमी होगी। तो मुसलमानों के अमान के अंदर जो मुसलमानों के अंदर कम से कम जो है यानी एक फर्द वो भी कोशिश कर सकता है भाई। तो कहते हैं वयसअ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम और सई कर सकता है मुसलमानों के अमान के अंदर, अदनाहुम उनमें जो कम से कम है। फिर हदीस का तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वल असलु फीहि कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और असल इस हुक्म के अंदर हुजूर अलैहि सलाम का कौल मुबारक है कि आपने फरमाया अल मुस्लिमून ततकाफ़ दिमाउहुम, कि मुसलमान जो हैं उनके खून बराबर हैं यानी किसास और दियतों के मामले में। वयसअ बिज़िम्मतिहिम और मुसलमानों के अमान में सई कर सकता है, अदनाहुम उनमें से जो कम से कम है यानी एक फर्द भी। तो हदीस यहीं तक थी भाई, आगे देखिए ऐ अकल्लुहुम यानी कम से कम, देखो साहिब हिदाया अदनाहुम का माना बयान कर रहे हैं, अदनाहुम का क्या माना है, कम से कम। तो कहते हैं ऐ अकल्लुहुम यानी उनमें जो कम से कम है, वहुवल वाहिदु और वो एक है भाई। याद रखना साहिब हिदाया ने अदनाहुम का माना किया अकल्लुहुम जो उनमें कम से कम है। अब ये अदना याद रखो ये इसमें तफजील है, यहां दो इहतमाल हैं भाई, ये इसमें तफजील दनाअत से भी हो सकता है और ये इसमें तफजील दुनुवन से भी हो सकता है। दनुआ या दुनुउ दुनुअन ये महमूज है, देखो आखिर में हमजा है, दनुआ या दुनुउ दुनुअन और इसका माना है घटिया होना, कम दर्जे वाला होना। तो अदना का माना होगा जो सबसे कम दर्जे वाला है, जो सबसे घटिया है, और इसी तरह अदना जो है ये दुनुवन से भी हो सकता है यानी वावी हो, दना या दुनु दुनुवन, इसके माने होते हैं करीब होना नजदीक होना। तो अदना का माना हुआ जो सबसे करीब है, और इसी तरह ये सबसे कम के माना में भी इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई, तो अदना इसमें तफजील है, अगर ये दोनों अन से हो यानी महमूद से हो तो इसका माना है सबसे कम दर्जे वाला, और अगर ये अदना दना या दोनों दोनों वन से हो तो इसका माना है जो सबसे कम है, जो सबसे कम है। तो मालूम हुआ अदनाहुम के अंदर दो इहतमाल आ गए, या तो अदनाहुम का माना है जो मुसलमानों में सबसे कम दर्जे वाला है, मुसलमानों के अमान में जो मुसलमानों में सबसे कम दर्जे वाला है वो भी कोशिश कर सकता है, वो भी अमान दे सकता है, और सबसे कम दर्जे वाला तो गुलाम है, कोई मुसलमान गुलाम जो है वो आजाद के मुकाबले में कम दर्जे वाला है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस हदीस को दलील बनाते हैं कि कोई मुसलमान गुलाम भी अमान दे सकता है। तवज्जो है, ये मसला आगे साहिब हिदाया भी बयान फरमाएंगे, याद रखो आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि मुसलमान गुलाम दो किस्म के हो सकते हैं। एक मुसलमान गुलाम वो है जिसको आका जिहाद में लड़ाई की इजाजत नहीं देता, और एक मुसलमान गुलाम वो है कि जिसका आका उसे लड़ाई की और जिहाद की इजाजत दे देता है। तो मालूम हुआ एक गुलाम है महजूर अलै, उस पर पाबंदी है, वो जिहाद पर नहीं जा सकता, और एक गुलाम है माजून लहू। पहले हमने माजून लहू का क्या तर्जमा पढ़ा था, वो गुलाम जिसे आका ने तिजारत की इजाजत दी हो, लेकिन यहां बात जिहाद की चल रही है, तो यहां माजून लहू से मुराद वो गुलाम है जिसको उसके आका ने जिहाद की इजाजत दी है, और महजूर अलै गुलाम से मुराद वो गुलाम है जिसको आका ने जिहाद की इजाजत नहीं दी। तो आगे चलकर साहिब हिदायत बतलाएंगे, हमारे अइम्मा का आपस में इख्तिलाफ है भाई। इमाम साहब फरमाते हैं कि वो गुलाम जिसे आका ने जिहाद की इजाजत दी है वो तो कुफार को अमान दे सकता है, लेकिन जिसे आका ने जिहाद की इजाजत नहीं दी वो कुफार को अमान भी नहीं दे सकता। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चाहे गुलाम को आका ने जिहाद की इजाजत न दी हो फिर भी ये अमान दे सकता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह यहां पर अदनाहुम का माना करते हैं जो उनमें सबसे मामूली है, मुसलमानों के जमान के अंदर जो मुसलमानों में सबसे कम दर्जे वाला है वो भी कोशिश कर सकता है, और वो तो मुसलमान गुलाम है तो वो भी अमान दे सकता है। तो मालूम हुआ ये अदनाहुम के अंदर दोनों इहतमाल आ गए। अदनाहुम का ये माना भी हो सकता है कि उन मुसलमानों में जो कम से कम है यानी एक फर्द, और अदनाहुम का यह माना भी हो सकता है कि मुसलमानों के अंदर जो सबसे कम दर्जे वाला है यानी गुलाम। तो साहिब हिदाया ने अदनाहुम का माना अकल्लुहुम के साथ किया, ये एहतराज है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की तफसीर से। उन्होंने अदनाहुम का क्या माना किया है, जो कम से कम दर्जे वाला है यानी गुलाम जो है वो भी अमान दे सकता है। तो साहिब हिदायत फरमाते हैं वयसा बिजिम्मतिहिम अदनाहुम, और मुसलमानों के अमान में कोशिश कर सकता है उनमें जो कम से कम है, अय अकल्लुहुम यानी जो उनमें कम से कम है, वहुवल वाहिदु और वो एक है, वली अन्नहु मिन अहलिल किताल फयखाफूनहु। यहां से अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, पहले नकली दलील जिक्र की हदीस को जिक्र किया, अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वली अन्नहु मिन अहलिल किताल, और इसलिए क्योंकि मुसलमानों का हर फर्द जो है मिन अहलिल किताल, वो अहले किताल में से है, वो लड़ाई वालों में से है, वो लड़ने की सलाहियत रखता है, वो लड़ने जाए या ना जाए लेकिन उसमें लड़ने की सलाहियत मौजूद है। तो कहते हैं वली अन्नहु मिन अहलिल किताल, और इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो अहले किताल है यानी वो लड़ाई की सलाहियत रखता है, फयखाफूनहु तो कुफार उससे डरते हैं। भाई याद रखो, अमान वो मुसलमान दे सकता है जिससे कुफार डरते हैं, जिससे कुफार खौफ खाते हैं, क्योंकि अमान देकर उसके खौफ को दूर किया जाएगा। लिहाजा अगर वो खौफ नहीं रखते किसी से तो वो शख्स उन्हें अमान भी नहीं दे सकता। मसलन दारुल हर्ब के अंदर एक हर्बी मुसलमान हो गया और वो दारुल हर्ब में रहता है तो उससे तो हर्बी खौफ नहीं खाते, वो तो उन्हीं के पास रहता है, उससे तो हर्बी खौफ नहीं खाते, लिहाजा आपको बतलाएंगे वो अमान नहीं दे सकता। तो अमान सिर्फ वही मुसलमान दे सकता है जिससे हर्बी खौफ खाते हों, और ये अमान देगा तो उनका खौफ दूर हो जाएगा। तो कहते हैं वली अन्नहु मिन अहलिल किताल फयखाफूनहु, और इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो लड़ाई करने वालों में से है, फयखाफूनहु तो कुफार जो है उनसे डरते हैं। इस हुआ मिन अहलिल मनाती, मनाअ का माना मैंने बतलाया था ताकत और कुव्वत के भी और लश्कर के भी, यहां मनाअ का तर्जमा लश्कर के साथ कर लें भाई। तो कहते हैं इस हुआ मिन अहलिल मनाती, इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो लश्कर वालों में से है। मुसलमान चाहे लश्कर में शामिल हो या ना हो लेकिन उसमें सलाहियत है, वो लश्कर वालों में शामिल हो सकता है, मर्द तो शामिल हो सकता है लड़ाई के लिए और औरत शामिल हो सकती है खाना पकाने या और खिदमत के लिए। तो मालूम हुआ हर आजाद मुसलमान मर्द या औरत जो है वो लश्कर वालों में से है यानी लश्कर वालों में शामिल होने की सलाहियत रखता है। तो कहते हैं इज हुआ मिन अहलिल मनाअती, इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो लश्कर वालों में से है। जब लश्कर वालों में से है तो लश्कर वालों से तो हर भी खौफ खाते हैं भाई, मुसलमानों के लश्कर से तो हरबी खौफ खाते हैं, तो यह माना है एस हुआ मिन अहलिल मनाती, इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो लश्कर वालों में से है, फयतहक्कुल अमानु मिनहु, लिहाजा अमान साबित हो सकता है हर मुसलमान की तरफ से, लिमुलाकाती ही महल्लहु, इसलिए क्योंकि अमान ने मुलाकात कर ली अपने महल से। अमान किसको दिया जाएगा? जो खौफ रखता है, जो मुसलमानों से डरता है भाई, और अमान देने वाला वो शख्स हो जिसका खौफ है उसके दिल में। तो हर मुसलमान मर्द या औरत जो है वो लश्कर वालों में से है, और जब लश्कर वालों में से है तो उनसे हरबी खौफ खाते हैं। तो जब कोई भी आजाद मर्द या औरत हरबी को अमान देगा तो इस अमान ने अपने महल से यानी महल्ले खौफ से मुलाकात कर ली डरने वाले से। हर हरबी क्या है? महल्ले अमान है, क्योंकि वो खौफ रखता है मुसलमानों का। तवज्जो है? तो अमान देने वाला ताकतवर होना चाहिए, उसका खौफ होना चाहिए, और अमान किसको दिया जाता है? जिसके दिल में खौफ होता है। तो जब मुसलमान ने अमान दिया तो अमान ने मुलाकात कर ली महल्ले खौफ से, लिहाजा ये अमान सही हुआ, ये अमान सही हुआ, ये माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन्नहु मिन अहलिल किताली, और इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो लड़ाई वालों में से है, फयखाफूनहु, तो कुफार उससे डरते हैं, इस हुआ मिन अहलिल मनाती, इसलिए क्योंकि हर मुसलमान जो है वो लश्कर वालों में से है, फयतहक्कुल अमानु मिनहु, लिहाजा उस मुसलमान की तरफ से अमान पाया जाएगा, लिमुलाकातिही महल्लहु, इसलिए क्योंकि अमान जो है वो अपने महल से यानी महल्ले खौफ से मुलाकात करेगा। अमान देने वाला कौन? मुसलमान है, और किसको अमान दिया? हरबी को, और हरबी क्या है? महल्ले खौफ है, इन मुसलमानों से डरने वाला है, तो अमान ने मुलाकात की अपने महल से, लिहाजा अमान साबित हो जाएगा। यह माना है लिमुलाकात ही महल लहू, इस वजह से कि अमान ने मुलाकात कर ली अपने महल से, सुमयता इला गैरी ही, फिर यह अमान मुतादी हो जाएगा उसके अलावा की तरफ। भाई अमान तो एक मुसलमान ने दिया है, लेकिन फिर यही अमान मुतादी हो जाएगा बाकी मुसलमानों की तरफ भी, और तमाम मुसलमानों की तरफ से इस हरबी को अमान मिल जाएगा। भाई बाकियों की तरफ क्यों मुतादी होगा? कहते हैं आप देखते नहीं रमजान का चांद जो है वो दो चार मुसलमान देखते हैं, तो उन दो चार पर अव्वलन रमजान का रोजा फर्ज हुआ, और फिर यही हुक्म मुतादी हो जाता है तमाम मुसलमानों की तरफ भाई, और सारे मुसलमानों पर रमजान का रोजा फर्ज हो जाता है। तो यहां पर भी अमान एक मर्द या औरत ने दिया है, लेकिन फिर यह मुतादी हो जाएगा तमाम मुसलमानों की तरफ, और तमाम मुसलमानों की तरफ से इस आदमी को, इस हरबी को अमान मिल जाएगा। तो कहते हैं सुम यतअद्दा इला गैरी ही, फिर यह अमान मुतादी हो जाएगा इस मुसलमान के अलावा दूसरे मुसलमानों की तरफ। वली अन्न सबबहु ला यतजज़ाउ, यहां से दूसरी दलील दे रहे हैं कि हर मुसलमान अमान दे सकता है। भाई याद रखो, ये जो ईमान है इसमें तकसीम नहीं हो सकती, कोई शख्स या तो मोमिन होगा या गैर मोमिन होगा, ये नहीं हो सकता कि आप कहें ये आदमी थोड़ा सा मोमिन है और थोड़ा सा काफिर है। नहीं भाई, ईमान में तकसीम नहीं हो सकती, या तो ईमान है या ईमान नहीं है भाई। इसी तरह याद रखो भाई, अमान के अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती कि कुछ मुसलमानों की तरफ से अमान हो और बाकियों की तरफ से अमान ना हो, लिहाजा जब अमान होगा तो तमाम मुसलमानों की तरफ से होगा। ये इसी तरह है जैसे निकाह की विलायत, आप जानते हैं कि सगीर या सगीरा पर उनके बाप दादा को विलायत निकाह हासिल होती है, और अगर बाप दादा ना हो तो फिर उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं यानी भाई, उनको विलायत निकाह हासिल होगी। अब सूरत यह है, एक सगीर या सगीरा है और इनके तीन चार भाई हैं जो बालिग हैं, तो अब याद रखो यहां पर इन सब को विलायत निकाह हासिल होगी, इनमें से जो भी इनका निकाह करवा देगा तो वो निकाह हो जाएगा। हां अलबत्ता इस सगीर या सगीरा को बालिग होने के बाद इख्तियार मिल जाएगा, वो चाहे तो इस निकाह को फसख कर सकते हैं। तो अब सूरत ये है, एक सगीर या सगीरा है और उसके मसलन चार भाई बालिग हैं, तो इन सब को विलायत निकाह हासिल होगी। विलायत निकाह में तकसीम नहीं हो सकती। हम यह नहीं कह सकते कि थोड़ी सी विलायत एक भाई को हासिल है, थोड़ी सी दूसरे को हासिल है और थोड़ी सी तीसरे और चौथे को हासिल है। नहीं, विलायत निकाह हासिल होगी तो पूरी पूरी विलायत निकाह हर एक को हासिल है। जो भी निकाह करवा देगा इनमें से पहले तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। तो जैसे ईमान में तकसीम नहीं, जैसे विलायत निकाह के अंदर तकसीम नहीं, इसी तरह अमान में भी तकसीम नहीं है। जब मुसलमान एक मुसलमान अमान दे देगा तो तमाम मुसलमानों की तरफ से अमान हो जाएगा। तो यह माना है वली अन्ना सबबहू लायता जज़ाउ, और इसलिए क्योंकि अमान का जो सबब है लायता जज़ाउ वो तकसीम नहीं हो सकता। वह वल ईमानु, और वो ईमान है। व कजल अमानु लायता जज़ाउ, और इसी तरह अमान जो है वो भी तकसीम नहीं हो सकता। फयतकामलु, तो वो कामिल हो जाएगा। जब एक भी मुसलमान अमान देगा तो वो अमान सबकी तरफ से कामिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। का विलायतिल इनकाही, जैसे कि निकाह करने की विलायत है कि तमाम वली जो हैं उनमें से हर एक को पूरी पूरी विलायत इनकाह होगी। तो यह माना है का विलायतिल इनकाही, जैसे निकाह करवाने की विलायत है कि उसके अंदर तकसीम नहीं हो सकती, तो हर वली को पूरी पूरी विलायत हासिल होगी। आगे देखिए, قال الا ان يكون في ذلك مفسده فينبذوا اليهم। हां, अगर ये अमान के अंदर फसाद हो और नुकसान हो मुसलमानों का, फिर इमाम जो है इसको रद्द कर देगा। इमाम क्या करेगा? इस अमान को रद्द कर देगा, लेकिन इसके अंदर भी उनको इत्तला देगा, उन दुश्मनों को पहले इत्तला देगा कि हमारे आदमी ने आपको अमान दी थी लेकिन हमारी तरफ से तुम्हें अमान हासिल नहीं है, उनको इत्तला दे देगा। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं इल्ला अय्यकू नफी जालिका मफसदतुन, मगर यह कि उस अमान के अंदर फसाद हो यानी मुसलमानों का कोई नुकसान हो। फयम बीजू इलेहिम, तो इमाम जो है इस अमान को उनकी तरफ फेंक देगा। यानी ये जो अमान दिया है, ये जो अमान का मुआहिदा किया है, इस मुआहिदे को इमाम उनकी तरफ फेंक देगा। तवज्जो है, उनकी तरफ फेंक देगा यानी उनको इत्तला दे देगा कि ये जो मुसलमान ने तुम्हें अमान दिया है हम इसके पाबंद नहीं है, हमारी तरफ से तुम्हें अमान नहीं है। तो अमान के अंदर अगर मुसलमानों का नुकसान हुआ फयम बेजू इलेहिम, तो इमाम जो है इस अमान को उनकी तरफ फेंक देगा यानी उनको इत्तला दे देगा। कमा इजा अमन अल इमामु बिनफ्सिही, जैसे कि इमाम खुद कुफार को अमान दे। सुम्मा रा अल मसलहत फी नब्जी, फिर उसकी राय यह हो कि मसलहत जो है इस अमान को तोड़ने में है। वकद बयान ना हो, और तहकीक इसको हमने बयान कर दिया। साहिबे हिदाया फरमाते हैं कि अगर एक मुसलमान ने अमान दी है उसके अंदर अगर मुसलमानों का नुकसान हो तो इमाम उस अमान को और उस माहिदे को तोड़ देगा और उनको इत्तला दे देगा। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे पीछे हमने बयान किया था कि इमाम खुद भी सुलह कर सकता है कुफार के साथ, लेकिन अगर उसकी राय बाद में बदल जाए कि सुलह के अंदर तो मुसलमानों का नुकसान है, तो इमाम उस माहिदे को भी तोड़ सकता है। तो जैसे इमाम अपनी अमान को तोड़ सकता है, इसी तरह दूसरे की दी हुई अमान को भी तोड़ सकता है। यह माना है कमा इदा अमन अल इमामु बिनफ्सिही, जैसे कि इमाम खुद अमान दे। सुम्मर अल मसलहत फिन नब्जी, फिर वो मसलहत समझे फिन नब्जी उस अमान को तोड़ने में। वकद बयान ना हो, तहकीक इसको हमने बयान कर दिया। वलौ हासर अल इमाम हिस्नन, और अगर इमाम किसी किले का मुहासरा कर ले, किसी किले को घेरे में ले ले। वह अमन वाहिदुम मिनल जैशी, और अमान दे दे लश्कर में से कोई एक आदमी, लश्कर वालों में से कोई एक आदमी कुफार को अमान दे दे। वफी ही मफसदतुन, इस हाल में कि उस अमान के अंदर फसाद हो यानी नुकसान हो मुसलमानों का। यम बेजुल इमामुल अमाना, तो इमाम जो है उस अमान को फेंक देगा यानी उस अमान को तोड़ देगा। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी भाई। वयु अद्दिबुहुल इमामु, और इमाम जो है उस शख्स की तादीब करेगा, वो जो लश्कर वाला जिसने अमान दिया था उसकी इमाम तादीब करेगा यानी उसको कुछ सजा वगैरह देगा। लिफ्तियात ही अला रही ही, इमाम की राय पर सबकत करने की वजह से। भाई इस शख्स को इमाम की राय का इंतजार करना चाहिए था कि इमाम इन लोगों को अमान देता है या नहीं। तो इसने इमाम की राय पर सबकत कर ली, लिहाजा इसको इमाम तादीब करेगा, इसको कुछ सजा देगा। भाई तो इफ्तियात का क्या माना? सबकत करना, सबकत करना। और नीज इसी तरह याद रखो, इफ्तियात का माना है किसी पर अपनी राय थोपना, यानी जबरदस्ती किसी पर अपनी राय थोप देना, इसको भी इफ्तियात कहते हैं। तो यह तर्जमा भी आप यहां कर सकते हैं, लिफ्तियाती ही आला राई ही, इसलिए क्योंकि उसने इमाम की राय पर अपनी राय थोप दी। तो कहते हैं वयु अदिबुहुल इमामु, इमाम उस शख्स की तादीब करेगा, यानी उसको कुछ सजा देगा, लिफ्तियाती ही आला राई ही, इस वजह से कि इमाम की राय पर उसने सबकत की है, बेखिलाफ इमा इदा का नफी ही नजर उन, बखिलाफ उस सूरत के जब इस अमान के अंदर मसलहत हो। नजर का यहां क्या तर्जमा करें? मसलहत। जब इस अमान के अंदर मसलहत हो, यानी मुसलमानों का फायदा हो, एक लश्कर वाले ने कुफार को अमान दी है लेकिन इस अमान के अंदर मुसलमानों का फायदा है, फिर इमाम इसको इसी तरह चलने देगा और उस शख्स को सजा भी नहीं देगा। भाई तो कहते हैं बेखिलाफी मा इदा का नफी ही नजर उन, बखिलाफ इसके कि जब इस अमान के अंदर मसलहत हो, लिअन्नहु रुबमा तफूतुल मसलहतु बिताखीरी, इसलिए क्योंकि बसा औकात मसलहत फौत हो जाती है ताखीर की वजह से, मसलहत ताखीर की वजह से फौत हो जाती है, तो इस शख्स ने जल्दी से इसीलिए अमान दे दी, इमाम की राय का इंतजार नहीं किया, क्योंकि अगर यह इंतजार करता तो मसलहत फौत हो जाती। तो कहते हैं लिअन्नहु रुबमा तफूतुल मसलहतु बिताखीरी, इसलिए क्योंकि बसा औकात मसलहत जो है वो फौत हो जाती है ताखीर की वजह से, फकान माजूरन, तो ये शख्स उजर वाला है, तो ये शख्स उजर वाला है, या माजूर का तर्जमा कर लें जिसका उजर कबूल किया जाए, फकान माजूरन, तो इस शख्स के उजर को कबूल किया जाएगा। आगे देखिए वला यजूज़ अमानु ज़िम्मीयिन, यहां से बतला रहे हैं कि कौन कौन अमान नहीं दे सकते। तो कहते हैं वला यजूज़ अमानु ज़िम्मीयिन, और जिम्मी का अमान जायज नहीं है, जिम्मी कुफार को अमान नहीं दे सकता, वजह यह कि ये जिम्मी ये भी काफिर है और जिनको अमान दे रहा है वो भी काफिर हैं, तो वो इसी के एतिकाद वाले हो गए, तो दिलों में बदगुमानी आती है कि मालूम हुआ ये उनको फायदा पहुंचाना चाहता है। होना तो क्या चाहिए? मुसलमानों का फायदा सोचना चाहिए, लेकिन ये जिम्मी उन कुफार का फायदा सोच रहा है, तो दिलों में बदगुमानी आती है, इसलिए उसका अमान सही नहीं। भाई कहते हैं वला यजूज़ अमानु ज़िम्मीयिन, और जिम्मी का अमान जायज नहीं है, लिअन्नहु मुत्तहमुन बिहिम, इसलिए क्योंकि जिम्मी जो है उन कुफार के बारे में मुत्तहम है, यानी इस पर तोहमत आती है, दिलों में बदगुमानी आती है, तोहमत का माना बदगुमानी के भी और इसी तरह इल्जाम के भी, लिअन्नहु मुत्तहमुन बिहिम, इसलिए क्योंकि उन कुफार के बारे में इस जिम्मी पर इल्जाम आता है कि मालूम उनको फायदा देना चाहता है। तो कहते हैं लिअन्नहु मुत्तहमुन बिहिम, इसलिए क्योंकि ये जिम्मी जो है उन कुफार के बारे में मुत्तहम है, यानी इस पर इल्जाम आता है, वकजा ला विलायत लहू अलल मुस्लिमीना, और नीस इसी तरह इस जिम्मी को मुसलमानों पर विलायत हासिल नहीं है, जिम्मी को तो मुसलमानों पर कोई विलायत हासिल नहीं है, तो अगर इसके अमान को तस्लीम कर लिया जाए तो गोया आपने इसको विलायत दे दी कि इसका अमान तमाम मुसलमानों पर नाफिज होगा, हालांकि इसको तो मुसलमानों पर विलायत हासिल नहीं है, लिहाजा इसका अमान भी सही नहीं। तो कहते हैं वकदा ला विलायत लहू अलल मुस्लिमीना, और इसी तरह जिम्मी को मुसलमानों पर कोई विलायत हासिल नहीं है। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला असीरिन वला ताजिरिन यदखुलु अलैहिम, वला असीरिन, इसका आतफ माकबल में जो जिम्मी आया था उस पर है। भाई मतन की इबारत जरा जोड़ें, वला यजूजु अमानु जिम्मीयिन, और जिम्मी का अमान भी जायज नहीं, वला असीरिन वला ताजिरिन यदखुलु अलैहिम, और इसी तरह किसी कैदी का अमान भी सही नहीं, वला ताजिरिन यदखुलु अलैहिम, और ना ही किसी ऐसे ताजिर का अमान सही है, यदखुलु अलैहिम, जो उन कुफार पर दाखिल होता है, यानी उनके पास आता जाता है। भाई कुफार के पास अगर कोई मुसलमान कैदी मौजूद है वो उन कुफार को अमान दे देता है, नहीं भाई मुसलमान कैदी उनको अमान नहीं दे सकता। इसी तरह कोई मुसलमान ताजिर उन कुफार के पास आता जाता है तिजारत के लिए, तो इस मुसलमान ताजिर का अमान भी सही नहीं है। भाई क्या वजह है इनका अमान क्यों नहीं सही, तो आपको बतलाएंगे साहिब हिदाया भाई कि ये जो कुफार के पास मुसलमान कैदी है इससे तो ये खौफ ही नहीं खाते, तो ये अगर अमान भी देगा तो अमान ने अपने महल से यानी महल्ले खौफ से मुलाकात नहीं की। मैंने बतलाया था अमान देने वाला ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे कुफार डरते हो, तो लिहाजा जब ये अमान देगा तो उन लोगों को अमान दे रहा है जो इससे डरते हैं, तो अमान महल्ले खौफ से मुलाकात करेगा तो उनको अमान हो जाएगा, लेकिन जो कैदी खुद उनकी कैद में मौजूद है उससे तो वो खौफ नहीं खाते, लिहाजा ये उनको अमान भी दे तो अमान ने अपने महल से मुलाकात नहीं की। और इसी तरह मुसलमान ताजिर जो है वो भी इनके पास आता जाता है तो उससे भी ये खौफ नहीं खाते। तो कहते हैं वला असीरिन, और इसी तरह कैदी का अमान भी जायज नहीं है, वला ताजिरिन यदखुल अलैहिम, और इसी तरह ऐसे ताजिर का अमान भी जायज नहीं है जो उन पर दाखिल होता है यानी उनके पास आता जाता है, लिअन्नहुमा मकहूरान तहता अयदीहिम, इसलिए क्योंकि वो तो मगलूब हैं उनके कब्जे के तहत। भई ये मुसलमान कैदी भी उनके कब्जे में है और मुसलमान ताजिर भी जब वहां जाता है तो गोया उनके कब्जे में होता है। तो कहते हैं लिअन्नहुमा मकहूरान तहता अयदीहिम, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो हैं ये उनके कब्जे के तहत मगलूब हैं, फला यखाफूनहुमा, लिहाजा वो हरबी जो हैं इनसे खौफ नहीं खाते, वो इनसे डरते नहीं हैं, वल अमानु यख्तसु बिमहल्लिल खौफी, और अमान तो खास है महल्ले खौफ के साथ, महल्ले खौफ होगा तो अमान भी सही होगा, अगर महल्ले खौफ ही नहीं है वो डरते ही नहीं है एक आदमी से तो उसका अमान भी सही नहीं है। वली अन्नहुमा युजबारानी अलैही, और इसलिए कि ये जो मुसलमान कैदी या मुसलमान ताजिर है इन पर वो जबर कर सकते हैं, इन पर वो वली अन्नहुमा युजबारानी अलैही, और इसलिए क्योंकि इन दोनों पर वो जबर कर सकते हैं, फयअरल अमानु अनिल मसलहती, तो ये अमान तो फायदे से खाली होगा, इसमें तो मुसलमानों का फायदा नहीं होगा अगर उन्होंने जबरन अमान लिया है उनसे। वली अन्नहुम कुल नमश्ता दल अमरु अलैहिम, और नीज इसलिए क्योंकि जब भी कुफार पर मामला सख्त होगा यानी मुसलमान उनको घेरे में लेंगे, तो यजिदून असीरन औ ताजिरन, तो वो किसी कैदी या ताजिर को पा लेंगे, फयतखल्लसून भी अमानी ही, तो ये छुटकारा पा लेंगे उसके अमान के जरिए, इस सख्ती से वो छुटकारा पा लेंगे उस मुसलमान ताजिर या कैदी के अमान के जरिए, फला यनफतहु लना बाबुल फतह, तो हमारे लिए गलबे का दरवाजा नहीं खुलेगा, हम उन पर गलबा नहीं पा सकेंगे। अगर मुसलमान कैदी या ताजिर का अमान भी मोतबर हो फिर तो जब भी मुसलमान उनको घेरे में लेंगे वो किसी मुसलमान कैदी या ताजिर के जरिए अमान ले लिया करेंगे, तो मुसलमान उन पर गलबा नहीं पा सकेंगे। तो यह माना है कि फयतखल्लसून भी अमानी ही, तो वो उसके अमान के जरिए छुटकारा हासिल कर लेंगे, फला यनफतहु लना बाबुल फतह, तो हमारे लिए फतह और गलबे का दरवाजा नहीं खुलेगा, वमन असलम फी दारिल हर्बी, और वो शख्स जो दारुल हर्ब के अंदर मुसलमान हुआ, वलम युहाजिर इलैना, और उसने हमारी तरफ हिजरत नहीं की वहीं पर रहता है, ला यसिहु अमानुहु, उसका अमान भी सही नहीं है, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अमान खास है महल्ले खौफ के साथ, और जो मुसलमान होकर वहीं पर रह रहा है उससे तो वो हरबी खौफ नहीं खाते। भाई आगे देखिए, वला यजूजु अमानुल अब्दिल महजूर इंदा अबी हनीफत रहिमहुल्लाह इल्ला अन यअज़ना लहु मौलाहु फिल क़िताल वक़ाल मुहम्मदुन रहिमहुल्लाहु तआला यसिहु। भाई अब वो अब्द महजूर अलै का मसला आ गया, मैंने आपको बतला दिया कि एक वो गुलाम है जिसको आका ने लड़ाई की इजाजत नहीं दी तो ये अब्द महजूरुन अलै है, और एक वो गुलाम है जिसको उसके आका ने लड़ाई की इजाजत दी है तो ये अब्द माजून लहू फिल क़िताल है। भाई तो याद रखो ये अब्द माजून लहू फिल क़िताल ये तो बिल इत्तेफाक हमारे अइमा के नजदीक अमान दे सकता है क्योंकि ये लश्कर वालों में से है और लश्कर वालों से दुश्मन खौफ खाता है। भाई लेकिन यह अब्द महजूर जो है इसके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा रहमल्ला और इमाम मोहम्मद रहमल्ला का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं यह अब्द महजूर भी अमान दे सकता है, इसका अमान भी मोतबर है, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, अब्द महजूर अमान नहीं दे सकता, इसका अमान मोतबर नहीं है भाई। तो कहते हैं वला यजूज अमान उल अब्दिल महजूर इंदा अबी हनीफा रहमल्ला, और अब्द महजूर का अमान जायज नहीं है इमाम साहिब के नजदीक, इल्ला अय्यजन लहू मौलाहु फिल किताली, मगर यह कि इस गुलाम को इसका आका इजाजत दे दे लड़ाई की। वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाहु यसिहु, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इसका अमान भी सही है, इस अब्द महजूर का अमान भी सही है। वह हुआ कौल शाफी रहमहुल्लाह, और यही कौल इमाम शाफी रहमहुल्लाह का भी है, वो भी फरमाते हैं कि अब्द महजूर अमान दे सकता है। जबकि याद रखो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह उनके बारे में दो रिवायतें हैं, एक रिवायत से पता चलता है कि वो इमाम साहिब के साथ हैं और दूसरी रिवायत से पता चलता है कि वो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के साथ हैं। तो कहते हैं वह अबू यूसुफ रहमहुल्लाह तआला माहू फी रिवायतीन, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के साथ हैं फी रिवायतीन एक रिवायत में, व मा अबी हनीफा रहमहुल्लाह फी रिवायतीन, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के साथ हैं फिर रिवायतिन एक रिवायत में। आगे देखिए ले मोहम्मदिन रहमहुल्लाह, अब इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की दलील आ गई कि अब्द महजूर अमान दे सकता है। कहते हैं लि मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की दलील जो है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि आपने फरमाया अमानुल अब्दी अमानुन, गुलाम का अमान भी अमान है, गुलाम का अमान भी अमान है। मालूम हुआ गुलाम अमान दे सकता है, और यहां गुलाम मुतलक जिक्र है, इसमें माजून लहू की कोई कैद मौजूद नहीं। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का यह कौल है अमानुल अब्दी अमान, उनके गुलाम का अमान भी अमान है। रवाहु अबू मूसल अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसको रिवायत किया है हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वली अन्नहु मुमिनुम मुमतनिउन, भाई मेरी किताब में है वली अन्नहु मुअम्मिनुन मुमतनिउन, मुअम्मिन भाई मुअम्मिन का माना है अमान देने वाला, और मोमिन का माना है ईमान वाला, तो ये मुअम्मिन यहां सही नहीं है भाई, मुअम्मिन लफ्ज होना चाहिए। तो कहते हैं वली अन्नहु मुमिनु मुमतनिउन, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की दलील चल रही है भाई। अब ये दूसरी अकली दलील आ गई इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की तरफ से, पहली नकली दलील थी हदीस को जिक्र किया, और ये दूसरी अकली दलील है। वो फरमाते हैं वली अन्नहु मुमिनु मुमतनिउन, और इसलिए क्योंकि अब्द महजूर जो है ये भी मोमिन है, मुसलमान है, मोमतनिउन और कुव्वत वाला है जी। ये मुसलमान है और कुव्वत वाला है। मुमतनि भाई इम्तना यमतनिउ, इम्तना का माना है बचना और रुकना, और ये लफ्ज पीछे भी गुजरा था जहां डाकुओं का बयान किया था साहिब हिदाया ने कि वो लोग जो कतए तरीक करें वो मुमतनि होने चाहिए, यानी जो अपना बचाव कर सकें, यानी मुकाबला कर सकें, कोई भी मुकाबले में आए तो उसका मुकाबला कर सकें, यानी वो कुव्वत वाले हों। तो यहां भी मुमतनिया का माना है कुव्वत वाले। तो कहते हैं वली अन्नहु मुमिनु मुमतनिउन, और इसलिए क्योंकि ये अब्दे महजूर भी मोमिन है और कुव्वत वाला है। भाई दो शर्तें हैं अमान देने के लिए, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं अमान देने वाला मोमिन होना चाहिए, जिम्मी नहीं, और नीज वो कुव्वत वाला होना चाहिए, कमजोर नहीं, क्योंकि कुव्वत वाला होगा तो इसके अमान देने से उनका खौफ दूर हो जाएगा। तो कहते हैं वली अन्नहु मुमिनु मुमतनिउन, और इसलिए क्योंकि अब्द महजूर जो है ये भी मोमिन है और कुव्वत वाला है, फयसिहु अमानुहु, तो इसका अमान भी सहीह है। एतबार बिल माजून लहू फिल किताली व बिल मुअब्बद मिनल अमानी, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह इस अब्द महजूर को कियास करते हैं अब्द माजून पर, वो अब्द माजून जिसको आका ने लड़ने की इजाजत दी है। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं जैसे अब्द माजून जो है वो भी ईमान वाला है और वो भी कुव्वत वाला है, तो उसका ईमान सही है। तो इसी तरह यह आबद महजूर भी ईमान वाला भी है और कुव्वत वाला भी है, इसका ईमान भी सही है। और नीज इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस आबद महजूर के ईमान को कियास करते हैं अमान मुअब्बद पर। किस पर? अमान मुअब्बद। याद रखो अमान दो किस्म पर है, एक अमान मुवक्कत है जो कुछ वक्त के लिए होता है, और एक अमान मुअब्बद है जो हमेशा के लिए होता है और जो जिम्मियों को हासिल होता है। जिम्मियों को किस किस्म का अमान है? अमान मुअब्बद है, हमेशा के लिए है, क्योंकि वो ममलिकत इस्लामिया के अंदर रहते हैं और ममलिकत इस्लामिया ने उनको अमान दिया है, उनकी जिम्मेदारी ली है भाई। तो ये जो जिम्मियों को अमान मिला हुआ है ममलिकत इस्लामिया में, ये अमान मुअब्बद है हमेशा के लिए। और ये जो जंग के अंदर बाज लोगों को अमान दिया जाता है, ये अमान मुअक्कत है, कुछ वक्त के लिए होता है, फिर वो वक्त गुजर जाए तो अमान खत्म हो जाता है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अब्द महजूर है बिल इतफाक हमारे तमाम अइमा के नजदीक ये अमान मुअब्बद दे सकता है। भाई एक हरबी है, एक हरबी है, वो दारुल इस्लाम में आकर रहना चाहता है, हमेशा के लिए जिम्मी बनकर रहना चाहता है, तो हमारे तीनों आइमा के नजदीक कोई गुलाम भी उसको अमान दे दे तो उसका जिम्मी बनना सही है, ये जिम्मी बन जाएगा, ये जिम्मी बन जाएगा। और वो अमान देने वाला गुलाम चाहे अब्द महजूर हो और चाहे अब्द मासून हो। तो मालूम हुआ अब्द महजूर का अमान मुअब्बद देना बिल इतफाक सही है। जब अब्द महजूर का अमान मुअब्बद सही है तो अमान मुअक्कत तो बतरीके औला सही होना चाहिए जो कुछ मुद्दत के लिए है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस अब्द महजूर को कियास करते हैं अब्द माजून पर। अब्द माजून जो है वो अमान दे सकता है क्योंकि वो मोमिन भी है और कुव्वत वाला भी है। तो ये अब्द महजूर भी अमान दे सकता है क्योंकि ये भी मोमिन भी है और कुव्वत वाला भी है भाई। और नीज वो इस अमान मुअक्कत को कियास करते हैं अमान मुअब्बद पर कि जैसे अब्द महजूर अमान मुअब्बद दे सकता है बिल इतफाक, तो वह अमान मुअक्कत भी दे सकता है। ये माना है, कहते हैं वली अन्नहु मुमिनुम मुमतनिउन, और इसलिए क्योंकि अब्द महजूर जो है वो मोमिन है और कुव्वत वाला है, फयसिहु अमानुहु, तो उसका अमान सहीह है, एतबारम बिल माजून लहू फिल किताली, कियास करते हुए अब्द माजून लहू फिल किताल पर, व बिल मुअब्बद मिनल अमानी, और कियास करते हुए मुअब्बद अमान पर, फल ईमानु। देखो मैंने आपको बतलाया था कि जो पीछे आया वली अन्नहु मुमिनुम मुमतनिउन, कि ये लफ्ज मुअम्मिन नहीं है बल्कि मुअमिन है। देखो खुद साहिब हिदायत के कलाम से भी मालूम हो रहा है, कहते हैं फल ईमानो, ये जो हमने ईमान की शर्त लगाई और आगे फरमाएंगे वल इम्तिनाउ, और ये जो हमने मुमतने यानी कुव्वत वाला होने की शर्त लगाई, इसकी क्या वजह है वो बताएंगे। कहते हैं फल ईमान लिकौन ही शर्तन लिल इबादती, तो ईमान जो है वो इबादत के लिए शर्त होने की वजह से है कि हमने भी ईमान की शर्त लगाई, क्योंकि इबादत के लिए ईमान का होना शर्त है, वल जिहाद इबादतुन, और जिहाद भी इबादत है, लिहाजा अमान देने वाला मोमिन होना चाहिए। वल इम्तिनाउ, और इम्तिना जो है, और इम्तिना इसलिए लितहक्कुकी इजालतिल खौफ बिही, इसलिए क्योंकि इसके जरिए खौफ का दूर करना पाया जाएगा। जब अमान देने वाला कुव्वत वाला होगा तो उसके अमान देने से दुश्मन का खौफ खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा मोमिन होना भी जरूरी और मुमतनिया होना भी जरूरी है। तो कहते हैं वली इम्तिना लितहक्कुकी इजालतिल खौफ बिही, और इम्तिना जो है वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से खौफ का दूर करना पाया जाएगा। व तासीर इअज़ाज़ुद्दीन व इकामतुल मसलहति फी हक़ जमातिल मुस्लिमीन। भाई यहां से साहिब हिदाया इल्लत जामिया जिक्र कर रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कियास की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अब्द महजूर को कियास किया था अब्द माजून लहू पर, और उन्होंने अमान मुअक्कत को कियास किया था अमान मुअब्बद पर। तो उसकी इल्लत जामिया क्या है, तो वो बयान कर रहे हैं, कहते हैं व तासीर, और मुअस्सिर होना इअज़ाज़ुद्दीनी, मैंने बतलाया था एजाज का माना है कुवत देना, ताकतवर बनाना। एजाजुद्दीन, दीन को कुवत देना। व इकामतुल मसलहती, और मसलहत कायम करना। फी हक जमातिल मुस्लिमीना, मुसलमानों की जमात के हक में। यानी जब ये अमान देंगे तो दुश्मन का शर दफा हो जाएगा, दुश्मन का शर दफा हो जाएगा, तो दीन को कुव्वत हासिल हो जाएगी और नीज मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा क्योंकि दुश्मन का शर दफा हो गया। तो मालूम हुआ कि जब अब्द माजून लहू अमान देगा तो उसकी वजह से जिस तरह दीन को कुव्वत हासिल होती है और मुसलमानों को फायदा होता है कि दुश्मन का शर दफा हो गया, इसी तरह अब्द महजूर भी जब अमान देगा तो दीन को कुव्वत हासिल होगी और दुश्मन का शर दफा हो जाएगा। और नीज जिस तरह अमाने मुअब्बद के अंदर, अमाने मुअब्बद के अंदर वो जिम्मी जब दारुल इस्लाम के अंदर आ गया तो इस्लाम को कुव्वत हासिल हो गई, वो पहले हरबी था अब जिम्मी बन गया, उसका शर खत्म हो गया। तो जिस तरह अमाने मुअब्बद के अंदर यानी जिम्मी बनाने के अंदर दुश्मन का शर दफा हो जाता है तो दीन को कुव्वत हासिल हो जाती है और तमाम मुसलमानों को फायदा पहुंचता है, इसी तरह अमाने मुअक्कद के अंदर भी दुश्मन का शर दफा होगा और दीन को कुव्वत हासिल होगी और तमाम मुसलमानों को फायदा होगा। बात समझ में आ गई? तो ये है इल्लत जामिया। तो कहते हैं व तासीर, और वो चीज जो मुअस्सिर है यानी असर डालने वाली है, एजाजुद्दीनी, वो दीन को कुव्वत देना है। वह इकामतुल मसलहति फी हक जमातिल मुस्लिमीना, और मुसलमानों की जमात के हक में मसलहत कायम करना है यानी उनको फायदा पहुंचाना है। भाई इजिल कलाम फी मिसल हादिहिल हालती, इसलिए क्योंकि ये कलाम इसी जैसी हालत के बारे में हो रहा है। बात यह चल रही है कि यह अमान ऐसा होना चाहिए जिसमें मुसलमानों का फायदा हो, जिसमें मुसलमानों का नुकसान हो, उसकी बात यहां नहीं हो रही। वो तो अगर कोई मुसलमान वो अमान देगा भी तो इमाम उसको रद्द कर देगा और दुश्मन को इतला दे देगा कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई अमान नहीं है। भाई तो कहते हैं इजिल कलाम फी मिसल हाजिहिल हालति, इसलिए क्योंकि कलाम इसी जैसी हालत के बारे में है। भाई पीछे आया ना कि इल्लत जामिया क्या है, आपने अब्द महजूर को कियास किया अब्द माजून लहू पर और आपने अमाने मुअक्कद को कियास किया अमाने मुअब्बद पर। इल्लत जामिया क्या है कि इसे दीन को कुव्वत हासिल होगी और मुसलमानों को फायदा होगा, तो वजह जिक्र कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को फायदा होगा इसलिए क्योंकि यह कलाम इसी किस्म के अमान के बारे में चल रहा है जिसमें मुसलमानों का फायदा हो। भाई यह माना है ईदिल कलाम उफी मिसल हादिहिल हालति, इसलिए क्योंकि यह कलाम इसी जैसी हालत के बारे में है। वह इन नमा ला यमलिकुल मुसाबकता, यहां से साहिब हिदाया एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला के दलाइल चल रहे हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला पर एतराज होता है। अगर अब्द महजूर का अमान सही है तो फिर तो इसको लड़ाई की भी इजाजत होनी चाहिए, हालांकि इसको लड़ाई की इजाजत नहीं है जब तक इसका आका इसे इजाजत ना दे दे, तो उसकी वजह जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं वह इन नमा ला यमलिकुल मुसाबकता, मुसाबकत कहते हैं मुकाबला करना, मुराद है जिहाद और लड़ाई। भाई वह इन नमा ला यमलिकुल मुसाबकता, और ये अब्द महजूर जो है ये मुकाबले का मालिक नहीं यानी कुफार का मुकाबला खुद नहीं कर सकता बगैर आका की इजाजत के। लिमा फी मिन तातील मनाफिल मौला, इस वजह से कि इसके अंदर आका के मनाफिया को मुअत्तल करना है। ये गुलाम अगर जिहाद पर जाएगा तो इधर आका के मनाफे मुअद्दल हो जाएंगे, आका की खिदमत वगैरह के सारे काम रह जाएंगे। भाई तो कहते हैं वह इन्नमा ला यमलिकुल मुसाबकता, और ये अब्द महजूर जो है ये लड़ाई का मालिक नहीं है। लिमा फीही मिन तातील मनाफिल मौला, इस वजह से कि इसके अंदर आका के मनाफिया को मुअत्तल करना है। वला तातील फी मुजर्रदिल कौली, और सिर्फ कौल के अंदर तो तातील नहीं, यानी अगर अब्द महजूर अमान देगा तो अमान देने के अंदर तो आका के मनाफे मुअत्तल नहीं होंगे, अमान तो सिर्फ जुबान से दे देगा। तो कहते हैं वला तातील फी मुजर्रदिल कौली, और सिर्फ कौल के अंदर तो तातील नहीं है यानी आका के मनाफे को मुअत्तल करना नहीं है, तो लिहाजा अब्द महजूर को अमान देने की इजाजत होगी। आगे देखिए, वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह अन्नहु महजूरुन अनिल किताल। अब इमाम साहब की दलील आ गई। इमाम साहब फरमाते हैं कि ये महजूर अनिल किताल है, ये लड़ाई नहीं कर सकता, इस पर पाबंदी है, तो लिहाजा ये अमान भी नहीं दे सकता। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु महजूरुन अनिल किताल, कि ये महजूर अनिल किताल है, यानी इसको किताल से रोका गया है, फला यसिहु अमानुहु, लिहाजा इसका अमान देना सही नहीं है, लिअन्नहुम ला यखाफूनहु, इसलिए क्योंकि कुफार इससे डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये अहले लश्कर नहीं है, ये लश्कर में बगैर इजाजत के जा ही नहीं सकता। तो कहते हैं लिअन्नहुम ला यखाफूनहु, इसलिए क्योंकि कुफार इसे डरते नहीं हैं, फलम युलाकिल अमानु महल्लहु, लिहाजा अमान ने अपने महल से मुलाकात नहीं की। इसने तो अमान दिया, लेकिन ये अमान तो तब सही होता अगर वो कुफार इससे डरते, वो महल्ले खौफ होते, लेकिन वो तो महल्ले खौफ ही नहीं है, तो अमान ने महल्ले खौफ से मुलाकात नहीं की, लिहाजा इस अमान का कोई एतबार नहीं। तो ये माना है फलम युलाकिल अमानु महल्लहु, तो लिहाजा इसके अमान ने अपने महल से मुलाकात नहीं की, बिखिलाफिल माजूनी लहू फिल किताली, बखिलाफ वो गुलाम जो माजून लहू फिल किताल है, लिअन्नल खौफ मिन्हु मुतहक्किकुन, इसलिए क्योंकि उसकी तरफ से खौफ जो है वो तो पाया जा रहा है, वो तो अहले लश्कर है, उससे तो कुफार खौफ खाते हैं। तो कहते हैं लिअन्नल खौफ मिन्हु मुतहक्किकुन, इसलिए क्योंकि उससे खौफ जो है वो साबित है, वलिअन्नहु इन्नमा ला यमलिकुल मुसाबकता। यहां से दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं कि अब्द माजून लहू जो है वो लड़ाई कर सकता है, लिहाजा वो अमान भी दे सकता है, लेकिन अब्द महजूर लहू लड़ाई नहीं कर सकता, तो वो अमान भी नहीं दे सकता, क्योंकि अमान भी एक किस्म की लड़ाई है। जैसे लड़ाई की वजह से दुश्मन का शर दफा हो जाता है, इसी तरह अमान की वजह से भी दुश्मन का शर दफा हो जाता है। मालूम हुआ अमान भी एक किस्म की लड़ाई है, और लड़ाई की तो अब्द महजूर को इजाजत नहीं, लिहाजा उसको अमान की भी इजाजत नहीं होगी। तो कहते हैं वली अन्नहु इन नमाला यमलिकुल मुसाबकता, और नीज इसलिए क्योंकि अब्द महजूर जो है वो लड़ाई का मालिक नहीं है, लिमा अन्नहु तसर्रुफुन फी हकिल मौला, इसलिए क्योंकि ये आका के हक के अंदर तसर्रुफ है। अगर अब्द महजूर लड़ाई करेगा, ये तो आका के हक में तसर्रुफ कर रहा है। तो कहते हैं लिमा अन्नहु तसर्रुफुन फी हकिल मौला, इसलिए क्योंकि ये लड़ाई जो है ये तो आका के हक में तसर्रुफ है, अला वजहिन, ऐसे तरीके पर, ला यारा, कि ये खाली नहीं है, अन इहतिमाल जररी, नुकसान के इहतिमाल से, फी हक ही, आका के हक में। ये अब्द महजूर अगर लड़ाई करेगा तो ये तो आका के हक में तसर्रुफ कर रहा है, और ये तसर्रुफ भी ऐसे तरीके पर कर रहा है जिसमें नुकसान भी हो सकता है। अगर इसको किसी ने कत्ल कर दिया तो आका का माल जाया हो जाएगा। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन्नहु इन नमा ला यमलिकुल मुसाबकता, और इसलिए क्योंकि अब्द महजूर लड़ाई का मालिक नहीं है, लिमा अन्नहु तसर्रुफुन फी हकिल मौला, इसलिए क्योंकि ये आका के हक में तसर्रुफ है, अला वजहिन, ऐसे तरीके पर, कि ला यारा अन इहतिमाल जररी फी हक ही, कि ये आका के हक में नुकसान के इहतिमाल से खाली नहीं है, इसमें नुकसान हो सकता है, वल अमानु नौ की तालिन, और अमान देना यह भी एक किस्म की लड़ाई है, कि इसकी वजह से भी दुश्मन का शर दफा होगा, वह हिमा जकर ना हो, और अमान देने के अंदर भी वो चीज है जो हमने जिक्र कर दी। जैसे अब्द महजूर की लड़ाई के अंदर आका को नुकसान पहुंच सकता है, इसी तरह यह अब्द महजूर के अमान देने में भी नुकसान का एहतमाल है, लेकिन किसका नुकसान? आम मुसलमानों का नुकसान। अगर यह अमान देगा तो इसको तो जंग का तजर्बा ही नहीं है, लिहाजा यकीनन ये गलती करेगा अमान देने में, और जब गलती करेगा तो आम मुसलमानों को नुकसान होगा। तो जब आका के नुकसान की वजह से इसको लड़ाई की इजाजत नहीं है, तो तमाम मुसलमानों के नुकसान की वजह से इसको अमान की इजाजत भी नहीं होगी। यह माना है वफी ही माजा करना हो, और इसके अमान देने में उस नुकसान का एहतमाल है जो हमने जिक्र कर दिया, लिअन्नहु कद युख्तिउ, इसलिए क्योंकि यह गलती कर सकता है, यह अब्द महजूर अमान देने में गलती कर सकता है, बल हुआ जाहिर, बल्कि यही जाहिर है कि यह गलती ही करेगा, वफी हिस्सा दुबाब इस्तिगनामी, और इसके अंदर गनीमतें हासिल करने के दरवाजे को बंद करना है। इसके अंदर तमाम मुसलमानों का नुकसान है। भाई क्या नुकसान है तमाम मुसलमानों का, कि इसकी वजह से गनीमतें हासिल करने का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब इसने अमान दे दिया, मुसलमान लड़ाई नहीं कर सकते, गनीमतें हासिल नहीं कर सकते। तो कहते हैं वफी हिस्सा दुबाब इस्तिगनामी, और इसके अंदर गनीमतें तलब करने का दरवाजा बंद हो जाएगा, लिहाजा इस अब्दे महजूर को अमान देने की इजाजत नहीं होगी। बिखिलाफ इल माजूनी, बखिलाफ अब्दे माजून के, ले अन्नहु रजिया बिही, क्योंकि उसका आका तो खुद इस अमान पर राजी है। ले अन्नहु हाजा मीर किसको राजे, इस अब्दे माजून लहू के आका को। वही अब्दे माजून लहू वो अमान दे सकता है क्योंकि उसका आका इस अमान देने पर राजी है। तवज्जो है, या यूं कहें क्योंकि उसका आका इस जरर पर राजी है। जब आका ने खुद इसको लड़ाई की इजाजत दे दी, हालांकि इस लड़ाई में तो आका का नुकसान हो सकता था, लेकिन आका खुद अपने नुकसान पर राजी है। यह माना है बेखिलाफ इल माजूनी, बेखिलाफ अब्द माजून के, ले अन्नहु रजिया बिही, इसलिए क्योंकि उसका आका तो खुद इस नुकसान पर राजी है। वल खता नादिरुन, और इसकी तरफ से खता नादिर होगी। भाई आब्दे महजूर को तो लड़ाई का तजर्बा नहीं, लिहाजा वो अमान देने में गलती करेगा, लेकिन ये आब्दे माजून लहू, इसको तो लड़ाई का तजर्बा हो चुका है, लिहाजा इसकी तरफ से गलती हो ऐसा नादिर ही होगा। भाई तो कहते हैं वल खता उन नादिरुन, और इसकी खता जो है वो नादिर होगी। लि मुबाशरति हिल किताला, इस वजह से कि ये लड़ाई को सरंजाम दे चुका है। वह बिखिलाफ इल मुअब्बदी, और बखिलाफ अमान मुअब्बद के। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने आब्दे महजूर को कियास किया था आब्दे माजून लहू पर, और अमाने मुअक्कद को कियास किया था अमाने मुअब्बद पर। तो पहले कियास का तो जवाब दे दिया कि आप आब्दे महजूर को आब्दे माजून लहू पर कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आब्दे माजून लहू जो है उससे दुश्मन डरता है, जबकि आब्दे महजूर तो जो है वो तो लश्कर का हिस्सा नहीं, उससे दुश्मन डरता नहीं है। और नीज इसलिए क्योंकि आब्दे महजूर जो है उसको लड़ाई की इजाजत नहीं, तो उसको अमान की भी इजाजत नहीं होगी, और नीज अगर उसको इजाजत होगी तो उसमें तो मुसलमानों का नुकसान है, जबकि आब्दे महजूर जो है उसको जब लड़ाई की इजाजत है, उसका आका इस नुकसान पर राजी है, तो उसको अमान की भी इजाजत होगी, और नीज उससे गलती होने का एहतमाल भी कम है क्योंकि वह खुद लड़ाई में हिस्सा ले चुका है। भाई तो लिहाजा आपका अब्द महजूर को अब्द माजून पर कियास करना सही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कियास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कियास नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अमान मुअक्कद को कियास किया था अमान मुअब्बद पर, अब उसका जवाब दे रहे हैं। तो कहते हैं वह बिखिलाफ इल मुअब्बदी, और बखिलाफ अमान मुअब्बद के। लिअन्नहु खलफुन अनिल इस्लामी, इसलिए क्योंकि वो तो इस्लाम का नाइब है। अमान मुअब्बद तो इस्लाम का नाइब है। भाई क्या माना इस्लाम का नाइब है? कहते हैं भाई जिस तरह इस्लाम कोई ले आए तो उसकी वजह से लड़ाई खत्म हो जाती है, इसी तरह अगर कोई जिम्मी बन जाए तो उसके साथ भी लड़ाई खत्म हो जाती है। मालूम हुआ ये अमान मुअब्बद जो है, यानी जिम्मी बनना, ये इस्लाम का खलीफा है, इस्लाम का नाइब है। जैसे इस्लाम से लड़ाई खत्म होती है, जिम्मी बनने से भी उस आदमी के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है। तो कहते हैं वह बिखिलाफ इल मुअब्बदी, और बखिलाफ अमान मुअब्बद के। ले अन्नहु खलफुन अनिल इस्लामी, इसलिए क्योंकि अमान मुअब्बद इस्लाम का नाइब है। फहुआ बिमंजिलति दावती इलैही, तो ये उसको इस्लाम की दावत देने के दर्जे में है। भाई याद रखो, दूसरों को इस्लाम की दावत देना यह काम हर मुसलमान कर सकता है, हत्ता कि अब्दे महजूर को भी विलायत हासिल है, वो भी दूसरों को इस्लाम की दावत दे सकता है। तो लिहाजा यहां पर जो अब्दे महजूर किसी को अमाने मुअब्बद देता है, उसको जिम्मी बनाता है, तो ये जिम्मी बनाना ये तो इस्लाम का नाइब है, इसकी वजह से लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो ये जिम्मी बनाना इस्लाम की दावत के दर्जे में है, और इस्लाम की दावत जो है उसकी विलायत तो आब्दे महजूर को हासिल होती है, तो जिम्मी बनाने की विलायत भी उसे हासिल होगी। भाई आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि ये जो अमान मुअब्बद है ये इस्लाम की दावत देने के दर्जे में किस तरह है। भाई देखिए, जिस तरह इस्लाम की दावत देने में किसी को इस्लाम की दावत दी जाए तो उसके अंदर दावत देने वाले का भी फायदा है और जिसको दावत दी जा रही है उसका भी फायदा है। जो दावत दे रहा है उसको भी फायदा है, उखर भी फायदा है, और जिसको दावत दी जा रही है उसका भी फायदा है अगर वो मुसलमान हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह जिम्मी बनाने के अंदर भी दोनों का फायदा है, इसलिए क्योंकि जब वो हरबी जिम्मी बन जाएगा तो उसका शर दफा हो जाएगा, अब वो मुसलमानों के साथ लड़ाई करने वाला नहीं, तो मुसलमानों को भी फायदा हुआ और खुद जिम्मी को भी फायदा हो गया कि अब उसके साथ भी कोई लड़ाई नहीं करेगा, उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जिस तरह दावत के अंदर दोनों का फायदा होता है, इसी तरह जिम्मी बनाने में भी दोनों का फायदा है। तो मालूम हुआ ये जिम्मी बनाना किस की तरह है? दावत की तरह है। और दूसरों को इस्लाम की दावत देना, अब्द महजूर को इसकी विलायत तो हासिल है, लिहाजा उसको अमान मुअब्बद देने की विलायत भी हासिल होगी। बात समझ में आ गई? ये माना है फहुआ बिमंजिलति दावती इलैही, तो ये अमान मुअब्बद जो है ये उस हरबी को दावत देने के दर्जे में है और इसकी तो अब्द महजूर को इजाजत है, तो अमान मुअब्बद की भी उसे इजाजत होगी। वली अन्नहु मुकाबलुम बिल जिज़्याति, और इसलिए क्योंकि जो अमान मुअब्बद है ये जिजिया के मुकाबिल है। भाई काबला युकाबिलो, मुकाबला का माना है एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुकाबला करना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना यानी उसके साथ मुकाबला करना। तो कहते हैं वली अन्नहु मुकाबलुम बिल जिज़्याती, और इसलिए क्योंकि ये जो अमान मुअब्बद है ये जिज़िया के मुकाबिल है, यानी इसकी वजह से मुसलमानों को नफा होगा कि जिज़िया हासिल होगा, जिज़िया हासिल होगा, तो इसमें मुसलमानों का नफा है भाई, लिहाजा इस अमान की इजाजत अब्द महजूर को होगी, जबकि अमान मुअक्कद के अंदर तो मुसलमानों का जरर है, लिहाजा उसकी इजाजत नहीं होगी। यह माना है वली अन्नहु मुकाबलुम बिल जिज़्याति, और इसलिए क्योंकि यह अमान मुअब्बद जो है यह तो जिज़िया के मुकाबिल है। वली अन्नहु मफरूज़ुन, यह तीसरा फर्क बयान कर रहे हैं, वली अन्नहु मफरूज़ुन इंदा मसअलतिहिम ज़ालिका, और इसलिए क्योंकि जो अमान मुअब्बद है मफरूज़ुन, इसको तो फर्ज किया गया है, इंदा मसअलतिहिम ज़ालिका, जब कुफार इसको मांगे, जब कुफार अमान मुअब्बद का सवाल करें, यानी वो यहां दारुल इस्लाम में आकर जिम्मी बनकर रहना चाहते हैं, तो इमाम पर और मुसलमानों पर फर्ज है कि उनको अमान दें, क्योंकि इसकी वजह से दुश्मन का शर दफा होगा, अब यह हरबी नहीं रहेगा, अब यह हमसे लड़ने वाला नहीं रहेगा, इसका शर दूर हो जाएगा और नीज इसके जरिए माल भी हासिल होगा, यह जिजिया अदा करेगा सालाना भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु मफरूज़ुन इंदा मसअलतिहिम ज़ालिका, और इसलिए क्योंकि ये अमान मुअब्बद जो है इसको तो फर्ज किया गया है, जब काफिर इसका सवाल करें, वह इसकातुल फर्ज नफ़ुन, और फर्ज को साकित करना नफा है, फर्ज का जिम्मे से साकित हो जाना ये भी तो नफा है भाई, फायदा है भाई। बात समझ में आ गई कि फर्ज अदा हो गया, तो कहते हैं वह इसकातुल फर्ज नफ़ुन, और फर्ज को साकित करना यह नफा है। फ़फ़्तारका, तो दोनों जुदा हो गए, यानी अब्द महजूर अब्द माजून लहू से जुदा हो गया और अमान मुअक्कद अमान मुअब्बद से जुदा हो गया, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कयास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कयास नहीं किया जाता भाई। तो ये माना एफ तारका, ये दोनों जुदा हो गए भाई। तो यहां साहिब हिदाया ने तीन फर्क बयान किए अमान मुअब्बद में और अमान मुअक्कद में। अमान मुअब्बद की तो अब्द महजूर को इजाजत होगी, लेकिन अमान मुअक्कद की इजाजत नहीं होगी। अमान मुअब्बद की इजाजत क्यों होगी? क्योंकि वो इस्लाम का खलीफा है, इस्लाम का नाइब है, जैसे इस्लाम लाने से जंग खत्म हो जाती है, इसी तरह अमान मुअब्बद से यानी जिम्मी बन जाने से भी उनके साथ जंग खत्म हो जाती है। तो लिहाजा ये कुफार को दावत देने के दर्जे में हुआ और दावत देना तो अब्दे महजूर के लिए भी जायज है, लिहाजा उसको अमान मुअब्बद देना भी जायज होगा। और नहीं, दूसरा फर्क यह है कि अमान मुअब्बद के अंदर मुसलमानों का फायदा है कि उनको जिजिया हासिल होगा, जबकि अमान मुअक्कद के अंदर तो मुसलमानों का नुकसान है कि गनीमतों का दरवाजा बंद होगा। और तीसरा फर्क यह बयान किया कि अमान मुअब्बद जो है वह तो फर्ज है मुसलमानों पर और इमाम पर, कि अगर कुफार जो है वह जिम्मी बनकर दारुल इस्लाम में रहना चाहें तो इमाम पर और मुसलमानों पर फर्ज है कि उनको अमान दें और उनको जिम्मी बनाएं, क्योंकि इसकी वजह से उनका शर खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा अमान मुअब्बद ये तो फर्ज है और अमान मुअक्कद तो फर्ज नहीं, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। तो मालूम हुआ अमान मुअब्बद के अंदर हर एतबार से फायदा ही फायदा है, लिहाजा अब्द महजूर को अमान मुअब्बद की तो विलायत हासिल होगी लेकिन अमान मुअक्कद की विलायत हासिल नहीं, क्योंकि वहां पर जाहिर यही है कि उससे मुसलमानों को नुकसान होगा। भाई आगे देखिए, वलौ अमना सबियु वहुवा ला याकिलु ला यसिहु। यहां से साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे, अगर मुसलमानों का कोई बच्चा जो है वो कुफार को अमान दे दे, पीछे तो जिक्र किया था कि आजाद मर्द या औरत जो हैं वो अमान दे सकते हैं, तो मुसलमान बच्चा क्या अमान दे सकता है या नहीं, तो आपको बतलाएंगे कि मुसलमान बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसके अमान का कोई एतबार नहीं, और अगर वो मुसलमान बच्चा बड़ा है समझदार है तो फिर उसके अंदर देखेंगे कि उसको लड़ाई की इजाजत है या नहीं, इमाम उसको लड़ने की इजाजत देता है या इजाजत नहीं देता। अगर इमाम उसको लड़ने की इजाजत नहीं देता तो फिर इसके अंदर भी इमाम साहेब और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है, जैसे अब्द महजूर के अंदर इख्तिलाफ था। और अगर इमाम इसको लड़ने की इजाजत देता है तो फिर इस सूरत में बिल इतफाक इसका अमान सहीह है। भाई तो कहते हैं वलौ अमना सबी वहुवा ला याकिलु, और अगर किसी बच्चे ने अमान दिया इस हाल में कि वो आकिल नहीं है यानी समझदार नहीं है, ला यसिहु तो उसका अमान सही नहीं है, कल मजनूनी जैसे कि मजनून है कि उसका भी अमान सही नहीं है, वह इनका न याकिलु और अगर वो बच्चा अकल रखता है यानी समझदार है, वहुवा महजूर अनिल किताल इस हाल में कि वो महजूर अनिल किताल है उसको लड़ाई से रोका गया है, फ़अल खिलाफी तो ये भी उसी इख्तिलाफ पर है यानी इसमें भी इमाम साहेब और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है, वह इनकान माजून लहू फिल किताल और अगर ये बच्चा ऐसा है कि माजून लहू फिल किताल है यानी इमाम ने उसको इजाजत दी है लड़ाई की, फल असहु अन्नहु यसिहु बिल इतफाकी तो ज्यादा सही कौल यही है कि बिल इतफाक इसका अमान सही है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, बाबुल गनाइमी व किस्मतिहा, ये बाब है गनीमतों और उनकी तकसीम के बयान में कि गनीमतें इमाम किस तरह तकसीम करेगा। कहते हैं वह इदा फतहल इमामु बलदतन अन वतन, और जब इमाम फतह कर ले किसी शहर को, अन वतन जबरदस्ती भाई जोरे बाजू के जरिए कुव्वत के जरिए, तो कहते हैं वह इदा फतहल इमामु बलदतन अन वतन और जब इमाम फतह कर ले किसी शहर को जबरदस्ती, आई कहरन ये माना बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया अन वतन का, कहरन का माना भी किसी से कोई चीज जबरदस्ती ले लेना यानी उसको मगलूब कर देना। तो कहते हैं वह इदा फतहल इमामु बलदतन अन वतन और जब इमाम किसी शहर को फतह कर ले, अन वतन आई कहरन उनको मगलूब करते हुए, फहुआ बिल खियारी तो इमाम को इख्तियार है, इनशा अकसमहा बैनल मुस्लिमीना चाहे तो उस शहर को तकसीम कर दे मुसलमानों के दरमियान यानी उस शहर की जमीनें वगैरह जो है वह मुसलमानों में तकसीम कर दे। याद रखो भाई यहां आया इनशा कस्समहा, ये आप बाबे तफ़ईल से भी पढ़ सकते हैं, कस्समा युकस्सिमु तकसीम का माना भी तकसीम करना, और आप चाहें तो इसको मुजर्रद से भी पढ़ सकते हैं इनशा कस्समहा, कस्समा यकसिमु का माना भी है तकसीम करना, तो दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं फहुआ बिल खियारी तो इमाम को इख्तियार है, इनशा कस्समहा बैनल मुस्लिमीना चाहे तो उस शहर को तकसीम कर दें मुसलमानों के दरमियान, कमा फअला रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु बि खैबरा जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के बारे में किया, यानी जैसे वहां हुजूर अलैहि सलाम ने जमीनों को मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमाया था, तो यहां भी इमाम तकसीम कर सकता है। याद रखो ये खैबर का लफ्ज गैर मुनसरिफ है, ये जगहों के नाम अमूमन गैर मुनसरिफ होते हैं। एक तो अलमियत होती है और एक तानीस भाई, क्योंकि जो भी शहर है या जो भी मुल्क है वो बुकातुन की तावील में, बुका कहते हैं जमीन का टुकड़ा, तो बुका की तावील में वो मुअन्नस भी है और आलम भी है, तो वो गैर मुनसरिफ होता है। तो कहते हैं कमा फाला रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम बि खैबर, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में किया। व इन शाअ अक़र अहलहु अलैहि, और अगर इमाम चाहे तो उस शहर वालों को ही उस पर बरकरार रखे, यानी उनसे जमीनें न ले। व वज़अ अलैहिमुल जिज़्याता, और उन पर जिज़्या मुकर्रर कर दे। व अला अराज़ीहिमुल खराजा, और उनकी जमीनों पर खराज मुकरर कर दे। भाई एक है उशर और एक है खराज। उशर जो है वो मुसलमान पर आता है, हर फसल के अंदर उस फसल का दसवां हिस्सा उसको बतौर जकात के देना पड़ेगा, और अगर उस जमीन पर उसका खर्चा होता है तो फिर निस्फ उशर उसको बतौर जकात के देना पड़ेगा। जबकि कुफार की जमीन पर खराज आता है और वो जमीनों के एतबार से मुख्तलिफ होता है, जितनी आला जमीन होगी तो खराज भी कुछ ज्यादा होगा भाई। और खराज जो है उसमें पैदावार को नहीं देखा जाएगा, बस सालाना टैक्स वो उसको अदा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई फसल काश्त करे या फसल काश्त न करे, उसको हर हाल में वो खराज अदा करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि चाहे तो उन लोगों को उन्हीं जमीनों पर बरकरार रखे और उन पर जिजिया मुकर्रर कर दे। वाला अराजी हिमुल खराजा, और उनकी जमीनों पर खराज मुकर्रर कर दे। कदालिका फअला उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिसवादिल इराकी बिमुवाफकतिम मिन सहाबति रजी अल्लाह तआला अन्हुम, और इसी तरह हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था सवाद इराक के बारे में भी मुवाफ़क़तिन मिन सहाबती, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की मुवाफ़क़त से। भाई याद रखो सवाद इराक भाई ये इराक का बहुत बड़ा इलाका था और बड़ा ही सरसब्ज़ो शादाब इलाका था, और यहां की जमीनें बड़ी आला और उमदा किस्म की थीं और खूब पैदावार देती थीं। तो इस सवाद इराक का जो इलाका था इसकी जमीनें बहुत आला थीं, और इसको सवाद इराक इसी वजह से कहते थे, सवाद का माना है स्याही, स्याही। और आप भी जानते हैं कि जहां सब्जा और दरख्त वगैरह बहुत ज्यादा हों तो सब्जे और दरख्त के गहरे सब्ज रंग की वजह से वहां कुछ स्याही सी मालूम होती है। तो यह जमीन भी चूंकि खूब सरसब्ज और शादाब थी तो इसीलिए इसको सवाद इराक कहा जाता था भाई। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में यह इलाका फतह हुआ। इससे पहले तरीका यह था कि जब भी किसी इलाके को फतह किया जाता था तो वहां की जमीनों को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर सवाद इराक के इस अजीम इलाके को जब फतह कर लिया गया तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी इस बात पर कि इस जमीन को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय यही थी कि इसकी वजह से बाद वालों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, चुनाचे आपने सहाबा किराम को जमा किया और उनसे मशवरा किया। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि आप इस जमीन को मुजाहिदीन में तकसीम न करें, इस जमीन को आप मुसलमानों के लिए रोक लें, इन जमीनों पर खराज मुकरर कर दें और इनके रहने वाले जो हैं उन पर जिजिया मुकरर कर दें। तो इस खराज और जिजिये की वजह से मौजूदा मुसलमानों को भी फायदा होगा और आने वाले मुसलमानों को भी फायदा होगा। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह राय बड़ी पसंद आई और फरमाने लगे कि यह है राय भाई, ये है राय। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जमीन को मुजाहिदीन में तकसीम न करने का फैसला किया। जबकि इधर मुसलमानों में से भी बाज मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे थे, जैसे हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और इसी तरह कुछ और लोग थे भाई, बाजों ने एक आध और भी सहाबी जिक्र फरमाए हैं, ये बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे थे। ये कहते थे कि ये इलाका हमने फतह किया है जिहाद के जरिए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खैबर के अंदर मुजाहिदीन के अंदर जमीनें तकसीम फरमा दी थी, लिहाजा ये जमीनें भी मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम की जाए, और बड़ी शिद्दत के साथ मुखालफत कर रहे थे, बड़ी शिद्दत के साथ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब किबार सहाबा से मशवरा कर लिया, उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अंसार जो मदीने के रहने वाले थे उनके बड़े बड़े लोगों को जमा किया और उनसे कहने लगे, मैं तुमसे एक बात के सिलसिले में मशवरा करना चाहता हूं, लेकिन देखो तुमने मुझे नहीं देखना और मेरी राय को नहीं देखना, बल्कि जो बात तुम्हें हक मालूम हो वो राय तुमने मुझे देनी है। तुम्हें मालूम है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं दबाया, लेकिन इस बात की वजह से कुछ लोग मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि आप हमारा हक दबा रहे हैं। बात समझ में आ गई। और फिर हजरत उमर उनसे फरमाने लगे कि इस तरह इराक का बहुत बड़ा इलाका फतह हुआ है और वहां की बड़ी आला किस्म की जमीनें हैं और मैं इस जमीनों को मुजाहिदीन में तकसीम नहीं करना चाहता। वजह यह कि इसकी वजह से बाद वाले मुसलमान बड़ी तकलीफ में मुबतला हो जाएंगे। जो जो इलाके फतह होते जा रहे हैं, अगर हम ये सारी जमीनें इन्हीं मुजाहिदीन में तकसीम करते चले जाएं तो बाद वालों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, और नीज बाद में तो ममलिकत की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाएंगी। ममलिकत के अंदर बड़े बड़े शहरों को चलाना होता है, उसके लिए भी अखराजात की जरूरत होती है, और नीज इसी तरह लश्कर के लिए भी अखराजात और खर्चे की जरूरत होती है। तो अगर हम ये जमीनें इस वक्त इन मुजाहिदीन में तकसीम कर देंगे तो बाद में आने वाली हुकूमतें बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी, ममलिकत की जरूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी, उनके लिए यह खर्चे पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने इरादा किया है कि इन जमीनों को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम न करूं, बल्कि इसको इसी तरह तमाम मुसलमानों का मुश्तरका माल बनाकर बाकी रखूं कि इन जमीनों से खराज वसूल करते रहेंगे और इनके रहने वालों से जिजिया वसूल होता रहेगा। तो वह अंसार भी कहने लगे कि आपकी राय बिल्कुल सही है। तो अंसार ने भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ताईद कर दी, लेकिन इधर वो लोग बड़ी मुखालफत कर रहे थे। तो चुनाचे बाज़ उलमा ने लिखा है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को तशदीद तकलीफ पहुंची तो आपने उनके लिए बददुआ भी की कि ए अल्लाह मेरे लिए बिलाल और उसके साथियों से काफी हो जा। चुनाचे कहते हैं उसी एक साल के अंदर अंदर ही सबका इंतकाल हो गया भाई। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह अजीम फैसला फरमाया जिसका आज भी उलमा कहते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बहुत अजीम फैसला फरमाया और इसके बड़े दूरस असरात हुए। वाकई अगर यह जमीनें मुजाहिदीन में तकसीम करते चले जाते तो फिर बाद में ममलिकतों का निजाम चलाना मुश्किल हो जाता। तो चुनाचे हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जमीनें उन्हीं लोगों के पास रहने दी और उन पर जिजिया भी मुकर्रर कर दिया। और ये सवाद इराक का इलाका कितना बड़ा था और इसकी जमीनें कितनी आला थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात से एक साल कबल ये खराज आना शुरू हो गया भाई। तो पहली मर्तबा जो खराज आया वो 10 करोड़ दिरहम थे भाई, अंदाजा लगाइए 10 करोड़ दिरहम। और दिरहम भी छोटे दिरहम नहीं थे, आम दिरहम तो 3 माशे 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती का होता है, यानी तकरीबन 3.25 माशे का होता है एक दिरहम, लेकिन ये दिरहम ये 4.5 माशे के थे, यानी एक दीनार के बराबर बड़े थे भाई। तो इस किस्म के 10 करोड़ दिरहम बतौर खराज के पहली मर्तबा मौसूल हुए, और यह वो जमाना था कि जब 2-4 दिरहमों के अंदर पूरे घर का बेहतरीन खर्चा चल जाता था महीने भर के लिए भाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब 2-4 दिरहम के साथ पूरे घर का महीने भर का खर्चा चल जाता हो तो वहां पर 10 करोड़ दिरहम, और दिरहम भी आला किस्म वाले बड़े दिरहम हो, तो यह कितनी ज्यादा दौलत बनती है भाई। तो दो तीन दिरहम के अंदर पूरे घर का महीने का इंतजाम होता हो, और उस जमाने के अंदर 10 करोड़ दिरहम आ रहे हैं और यह सिलसिला फिर चलता ही रहा भाई। तो अंदाजा लगाइए कितनी दौलत आ रही थी और तमाम मुसलमानों को उसका फायदा पहुंच रहा था, क्योंकि यह सारी रकम बैतुल माल में जमा होती थी और मुसलमानों की तमाम जरूरियात इसके जरिए पूरी की जाती थी भाई। तो यही जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं कदालिका फाला उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिसवादिल इराकी, और इसी तरह किया था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाद इराक के बारे में, بموافقه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين کی موافقت سے, یعنی صحابہ کی موافقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا فرمایا. اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے اندر جو زمینوں کو تقسیم فرمایا تھا उसको आम सहाबा भी कोई कतई फैसला नहीं समझते थे कि हमेशा ही ऐसा करना पड़ेगा. अगर आम सहाबा भी इसको हुजूर का कतई फैसला समझते तो वो कभी भी इस राय पर जमा न होते भाई. तो कहते हैं हजरत उमर ने यह फैसला फरमाया, वलम युहम्मद मन खालफहू, और तारीफ नहीं की गई उनकी जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी, जिन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के इस फैसले की मुखालफत की थी उसकी तारीफ नहीं की गई, उसको आम सहाबा ने पसंद नहीं फरमाया. वफी कुल मिन ज़ालिका कुदवतुन, कुदवा कहते हैं भाई पेशवा भाई, जिसका इत्तेबा किया जाए, तो जो पेशवा हो काबिल इत्तेबा नमूना हो उसको कुदवतुन कहते हैं. और याद रखो यह कुदवतुन का लफ्ज मुसल्लसुल फा है, यानी फाए कलीमा जो है यानी काफ, इस पर तीनों तरह की हरकतें अरब पढ़ते हैं, कुदवतुन कदवतुन और किदवतुन. कहते हैं वफी कुल मिन ज़ालिका कुदवतुन, और इनमें से हर एक के अंदर पेशवा है, यानी चाहे जमीनों को तकसीम किया जाए, चाहे जमीनों को उन्हीं लोगों के पास रहने दिया जाए और उस पर खराज मुकर्रर कर दिया जाए, दोनों के अंदर पेशवा हैं, यानी एक हुजूर अलैह सलाम का फेल है तो दूसरा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फेल है. और हुजूर अलैह सलाम ने भी हमें हुक्म दिया है कि मेरा और मेरे खुलफाए राशिदीन का इत्तेबा करो भाई. तो कहते हैं वफी कुल मिन ज़ालिका कुदवतुन, तो इनमें से हर एक के अंदर यानी तकसीम में या बरकरार रखने में इसमें पेशवा मौजूद है. फयतखय्यरू, तो इमाम को इख्तियार होगा. वकील अल औला हुवल अव्वलु इंदा हाजतिल गानिमीना, और कहा गया है अल औला हुवल अव्वलु के बेहतर जो है वो पहला तरीका है, यानी कि तकसीम कर दिया जाए. इंदा हाजतिल गानिमीना, जब गनीमत हासिल करने वालों को हाजत हो यानी मुसलमानों को माल की हाजत हो तो फिर तकसीम करना बेहतर है. वस्सानी इंदा अदमिल हाजति, और दूसरा तरीका यानी उन्हीं लोगों को बरकरार रखना और खराज मुकरर करना यह बेहतर है. इंदा अदमिल हाजति, जिस वक्त मुसलमानों को हाजत न हो. लियकून उद्दतन फि ज़मानि सानी, उद्दा कहते हैं जरूरत के लिए तैयार की हुई चीज, तो कहते हैं लियकून उद्दतन फि ज़मानि सानी, ताकि ये दूसरे जमाने के अंदर यानी बाद वाले जमाने के अंदर जरूरत के लिए काम आने वाली चीज हो. वहां जाफिल आकारी, और ये उन लोगों को जो बरकरार रखना है फिल आकारी गैर मनकूली जायदाद के अंदर है. याद रखो ये जो माल है ये दो किस्म पर है, कुछ माल वो है जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, जैसे ये घर का सारा सामान है, मवेशी वगैरह हैं, इन सब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है. और कुछ चीजें वो हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, उसको आकार कहते हैं, यानी गैर मनकूली जायदाद भाई. जैसे जमीन है, खेत है, फैक्ट्री है, दुकान है, घर है, ये सारी चीजें जो हैं इनमें से किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तो इनको आकार कहते हैं, यानी गैर मनकूली जायदाद. तो कहते हैं वहादा फिल आकारी, और ये गैर मनकूली जायदाद में है, यानी कुफार को उस पर बरकरार रखा जा सकता है. अम्मा फिल मनकूल मुजर्रदी ला यजूजुल मन्नु बिर्रद्द अलैहिम, और बाकी मनकूल मुजर्रद जो है, मनकूल मुजर्रद यानी जो महज़े मनकूली हैं भाई, याद रखो अगर जमीनों पर हम उन्हीं कुफार को बरकरार रखते हैं जिम्मी बनाकर, तो इन जमीनों में खेती बाड़ी करने के लिए और काश्त करने के लिए कुछ सामान की भी जरूरत होगी, जैसे हल चलाने के लिए हल की जरूरत होगी, बीज की जरूरत होगी ताकि फसल उगाई जा सके, और इसी तरह बैल वगैरह और जरूरत की चीजें होंगी। तो ये भी मनकूली चीजें हैं लेकिन ये जमीन के ताबे हैं। तो अगर कुफार को हम उन्हीं जमीनों पर बाकी रखते हैं तो सारा कुछ उनसे हम नहीं ले लेंगे, अगर सारा माल हमने उनसे छीन लिया तो फिर वो काश्तकारी कैसे करेंगे भाई, उनके पास जब हल भी नहीं है, बैल भी नहीं है, बीज भी नहीं है, तो वो किस तरह काश्तकारी के काम को जारी रखेंगे जी। तो ये जो चीजें हैं जो जमीन के ताबे हैं ये भी मनकूली हैं लेकिन ये उस जमीन के ताबे हैं, और बाकी चीजें वो मनकूल मुजर्रद हैं यानी वो जमीन के ताबे नहीं है भाई। तो कहते हैं अम माफिल मनकूल मुजर्रदी, तो बाकी मनकूल महज माल जो है उसके अंदर ला यजूजुल मन्नु बिर्रद अलैहिम, एहसान जायज नहीं है उन पर रद्द करते हुए। भाई याद रखो कदीम जमाने के अंदर जब किसी इलाके पर लोग कब्जा करते तो वहां की तमाम जमीनों और जायदादों पर भी कब्जा कर लेते थे और वहां के रहने वालों को या तो कत्ल कर देते या अपने गुलाम और बांदियां बना देते थे। तो यहां पर मुसलमानों ने जब इस इलाके पर फतह हासिल की है तो उनकी लोगों को उन जमीनों पर बरकरार रखा, तो यह मालूम हुआ मुसलमान उन पर एहसान कर रहे हैं कि उनकी जमीनें उन्हीं के पास रहने दी। तो जमीनों के अंदर तो यह एहसान जायज है जैसे कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फेल से साबित है, लेकिन इसके अलावा और जो मनकूली माल है वो भी इन्हीं लोगों के पास रहने दिया जाए इन पर एहसान करते हुए, कहते हैं ये जायज नहीं है भाई। तो ये माना है अम माफिल मनकूल मुजर्रदी, और बाकी वो चीजें जो मनकूल महज हैं यानी जमीन के ताबे नहीं हैं, ला यजूजुल मन्नु, इसके अंदर उन लोगों पर एहसान जायज नहीं है, बिर्रद अलैहिम, उनको वापस लौटाकर उन पर एहसान करना जायज नहीं है, लिअन्नहु लम यरिद बिही शरउ फीही, इसलिए क्योंकि इसके साथ शरीयत वारिद नहीं हुई इन चीजों में कि उन पर एहसान किया जाए और ये माल वगैरह उन्हीं के पास रहने दिया जाए, शरीयत ने इसका हुकाम नहीं दिया लिहाजा ये एहसान उन पर नहीं किया जाएगा। वफिल अकार खिलाफ शाफई रहमहुल्ला, और गैर मनकूली जायदाद में इमाम शाफई रहमहुल्ला इख्तिलाफ करते हैं। भाई हमारे नजदीक तो इमाम को इख्तियार है, जब किसी इलाके को फतह किया तो चाहे उन जमीनों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दे, चाहे उन्हीं लोगों को उन जमीनों पर बरकरार रखे और उन पर खराज और जिजिया मुकरर कर दे, तवज्जो है। तो हमारे नजदीक तो इमाम को इख्तियार है, लेकिन इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि नहीं, इमाम को यहां इख्तियार नहीं है, यह सारी जमीनें मुजाहिदीन में तकसीम करना पड़ेंगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैबर की जमीनें मुजाहिदीन में तकसीम फरमाई थी भाई। तो यह माना है वफिल आकार खिलाफ शाफी रहमहुल्ला, और गैर मनकूली जायदाद के अंदर इमाम शाफी रहमहुल्ला इख्तिलाफ फरमाते हैं, लिअन्ना फिल मन्नी इबता हकिल गानिमी न औ मिल की हिम, इसलिए क्योंकि एहसान करने में मन नून किसे कहते हैं, मन नून मुशद्दद है, मन का माना एहसान, लिअन्न फिल मन्नी, इसलिए क्योंकि एहसान करने में इबताल हक्किल गानिमीना, गनीमत हासिल करने वालों के हक को बातिल करना है, औ मिल की हिम, या उनकी मिल्कियत को बातिल करना है। भाई याद रखो जब मुसलमान जिहाद के लिए दारुल हर्ब चले गए तो वहां पर जो माल गनीमत उनको हासिल हो या जो जमीनें उनको हासिल हो तो इंदल अहनाफ मुजाहिदीन उस माल के और उन जमीनों के मालिक नहीं बने। हां जब मुजाहिदीन इस माल को दारुल इस्लाम ले आएंगे फिर मालिक बन जाएंगे। तो इंदल अहनाफ मुजाहिदीन को जो माल गनीमत हासिल हो तो जब तक मुजाहिदीन दारुल हर्ब में हैं तो मुजाहिदीन इस माल के मालिक नहीं बने, हां उनका हक आ गया है इस माल के अंदर जी। मुजाहिदीन का हक आ गया है और मालिक ये नहीं बने। मालिक कब बनेंगे, जब वो इस माल को लेकर दारुल इस्लाम आ जाएंगे, तो अब तमाम मुजाहिदीन इस माल के मालिक बन जाएंगे भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दारुल हर्ब के अंदर जो माल गनीमत मुसलमानों को हासिल हो मुजाहिदीन वहीं पर उसके मालिक बन जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो क्या फर्क हुआ हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का? इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मुजाहिदीन दारुल हर्ब में ही माल गनीमत के मालिक बन गए, जबकि हमारे नजदीक मुजाहिदीन दारुल हर्ब में माल गनीमत के मालिक नहीं बने, उस माल के अंदर सिर्फ मुजाहिदीन का हक आ गया है। मालिक वो तब बनेंगे जब वो इस माल को दारुल इस्लाम मुंतकिल कर लेंगे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र हो रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए अहनाफ अगर ये जमीनें जो हैं इन्हीं कुफार के पास रहने दी जाएंगी तो तुम्हारे नजदीक इसके अंदर मुजाहिदीन का हक आ चुका है, तो अगोया आप मुजाहिदीन के हक को बातिल कर रहे हैं, और हमारे नजदीक मुजाहिदीन इसके मालिक बन चुके हैं तो गोया मुजाहिदीन की मिल्कियत को बातिल किया जा रहा है, और दोनों में से एक चीज भी सही नहीं। किसी के हक को बातिल करना या किसी की मिल्कियत को बातिल करना सही नहीं है। लिहाजा ये जमीनें जो मुजाहिदीन के कब्जे में आई हैं इनको मुजाहिदीन ही में तकसीम किया जाएगा। दलील समझ में आ रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं लिअन्ना फिल मन्नी, इसलिए क्योंकि एहसान करने में, कौन सा एहसान? कि दुश्मन के पास ही यह जमीनें रहने दी जाए, तो इस एहसान के अंदर इबताल हक़िल गानिमीना, गनीमत वालों का हक बातिल करना है, और मिल्किहिम या उनकी मिल्कियत को बातिल करना है। अगर ये जमीनें उन्हीं के पास आप रहने देंगे और उन पर एहसान करेंगे तो इसकी वजह से ए अहनाफ तुम्हारे नजदीक भी ये सही नहीं, क्योंकि आप गनीमत वालों का हक बातिल कर रहे हैं, और हमारे नजदीक भी यह सही नहीं, क्योंकि इस सूरत में गनीमत वालों की मिल्कियत को बातिल करना लाजिम आएगा। यह माना है लिअन्ना फिल मन्नी, इसलिए क्योंकि एहसान करने में इबताल हक़िल गानिमीना, गनीमत वालों के हक को बातिल करना है, यानी अहनाफ के नजदीक, और मिल्किहिम या उनकी मिल्कियत को बातिल करना है, यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, फला यजूज मिन गैरी बदली युआदिलुहू, लिहाजा ये इबताल हक जायज नहीं होगा मिन गैरी बदलिन, बगैर किसी ऐसे बदल के, युआदिलुहू जो उसके बराबर हो। मुजाहिदीन का यह हक या उनकी ये मिल्कियत बातिल नहीं की जाएगी, हां इसका कोई इवज आ जाए जो इसके बराबर हो, फिर इनका यह हक या मिल्कियत बातिल की जा सकती है। तो यह माना है फला यजूज़ु मिन गैरी बदलिन युआदिलुहू, लिहाजा गनीमत वालों के इस हक को या उनकी इस मिल्कियत को बातिल करना जायज नहीं है बगैर किसी ऐसे बदल के, युआदिलुहू जो इसके बराबर हो। वल खराज गैरु मुआदिलिन लिकिल्लतिही, और खराज जो है वो तो इसके बराबर नहीं है लिकिल्लतिही, उसके कलील होने की वजह से। ए अहनाफ अगर आप ये कहते हैं जमीनें इन्हीं के पास रहने देते हैं और इन जमीनों का खराज वसूल करेंगे तो खराज तो बड़ा थोड़ा सा होता है, एक जमीन है और एक उसके ऊपर पूरे साल में चंद दिरहम मिलेंगे तो जमीन के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा मालूम हुआ खराज वो इवज तो है इस हक या मिल्कियत का, लेकिन ये तो बड़ा थोड़ा सा इवज है, ये तो उसके बराबर नहीं, लिहाजा इस खराज के इवज में इन गनीमत वालों के हक को या उनकी मिल्कियत को बातिल करना सही नहीं है। भाई ये माना है वल खराज गैरु मुआदिलिन लिकिल्लतिही, और खराज जो है वो तो इन जमीनों के बराबर नहीं है लिकिल्लतिही, अपने कलील होने की वजह से, बिखिलाफिर रिकाबी। यहां से साहिब हिदाया इमाम शाफई रहमहुल्ला पर होने वाले एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमहुल्ला ने फरमाया कि ये जो मुजाहिदीन ने जो इलाका फतह किया है इन जमीनों के अंदर मुजाहिदीन की मिल्कियत आ गई, लिहाजा मुजाहिदीन की इस मिल्कियत को बातिल नहीं किया जा सकता, इस जमीन पर उन्हीं कुफार को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो यही एतराज तो इन कुफार की गर्दनों के बारे में भी होता है कि क्योंकि मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया है तो ये जितने कुफार मर्द और औरतें हैं इनको भी तो गुलाम और बांदियां बनाया जाता है, तो इनकी गर्दनों के यानी इनकी जात के अंदर भी तो मुजाहिदीन का हक आ गया है, इनकी जात में भी तो मुजाहिदीन का हक आ गया है तो लिहाजा इनको तो जिम्मी बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप फरमाते हैं इनको जिम्मी बनाया जा सकता है, इनको जिम्मी बनाया जा सकता है। तो अगर इनको आप जिम्मी करार देंगे तो गोया इनके अंदर जो मुजाहिदीन की मिल्कियत आई थी उसको आपने बातिल कर दिया। तो अगर जमीन के सिलसिले में मुजाहिदीन की मिल्कियत को बातिल नहीं करार दिया जा सकता तो ये जो कुफार मर्द और औरतें हैं इनके अंदर भी मुजाहिदीन के हक को बातिल करार नहीं देना चाहिए। तो उसका जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ से साहिब हिदाया और फरमाते हैं कि नहीं, ये जो कुफार मर्द और औरतें जो हैं इनकी गर्दनों के अंदर यानी इनकी जातों के अंदर मुजाहिदीन का हक नहीं आया, इनके अंदर मुजाहिदीन का हक नहीं आया। चुनांचे इसीलिए इमाम के लिए जायज है कि वो इन तमाम बालिग मर्दों को कत्ल करवा सकता है, वो इन बालिग मर्दों को कत्ल करवा सकता है। अगर मुजाहिदीन की मिल्कियत इनकी गर्दनों में साबित होती तो इमाम के लिए इनका कत्ल जायज ही ना होता, लेकिन इमाम के लिए इन तमाम कुफार को कत्ल करना जायज है। मालूम हुआ इन कुफार के अंदर मुजाहिदीन की मिल्कियत नहीं आई। तो कहते हैं बेखिलाफ रिकाबी, बेखिलाफ गर्दनों के, लिअन्न लिल इमामी अय्यबतुला हक्कहुम रअसन बिल कत्ल, लिअन्न लिल इमामी इसलिए क्योंकि इमाम के लिए जायज है अय्यबतुला हक्कहुम कि वो इन मुजाहिदीन के हक को बातिल कर दे रअसन सिरे से ही बिल कत्ल कत्ल के जरिए। तो इन गर्दनों के अंदर मुजाहिदीन की मिल्कियत या हक नहीं आया, इसीलिए तो इमाम के लिए इन तमाम को कत्ल करवाना भी जायज है। तो जब इमाम के लिए कत्ल करवाना जायज है तो इवज के बदले इनको छोड़ देना कि तुम जिजिया अदा किया करो, ये तो बतरीके औला जायज होगा। जब कत्ल जायज है तो इवज लेकर इनको छोड़ना बतरीके औला जायज होगा क्योंकि उसमें तो फायदा भी है मुसलमानों का। तो कहते हैं फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं बेखिलाफ रिकाबी, बेखिलाफ इन कुफार की गर्दनों के, लिअन्न लिल इमामी अय्यबतुला हक्कहुम रअसन इसलिए क्योंकि इमाम के लिए जायज है कि वो इन गनीमत वालों के हक को सिरे से ही बातिल कर दे बिल कत्ल कत्ल के जरिए। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील थी। यहां तक भाई हासिल कलाम क्या हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जमीन के अंदर मुजाहिदीन का हक आ चुका है या मिल्कियत आ चुकी है, उसको बातिल नहीं किया जा सकता, और गर्दनों के अंदर मुजाहिदीन की मिल्कियत और हक नहीं आया, लिहाजा उसका एतराज आप हम पर नहीं कर सकते। अब हम जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वल हुज्जत अलैहिम मा रवैनाहु, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के खिलाफ जो हुज्जत है, जो दलील है, मा रवैनाहु वो है जिसको हमने रिवायत कर दिया, यानी वो जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का फेल है कि उन्होंने इराक वालों को ही उन जमीनों पर बरकरार रखा था। भाई वली अन्न फीही नजरन, यहां से दूसरा जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह को, कहते हैं वली अन्न फीही नजरन और नीज इसलिए क्योंकि इसके अंदर मसलहत है, उन्हीं कुफार को इन जमीनों पर हम बाकी रखेंगे तो इसमें मसलहत है, मुसलमानों का फायदा है। लिअन्नहुम कल अकरतिल आमिलति लिल मुस्लिमीन अल आलिमति बिवुजूहि ज़राअति, अकारा जमा है अकार की, अकार कहते हैं काश्तकार और किसान को। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह को दूसरा जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं कि अगर उन्हीं कुफार को उन जमीनों पर बरकरार रखा जाएगा तो इसमें मुसलमानों का फायदा भी है क्योंकि वो कुफार जो हैं वो इन जमीनों के मामलात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि ये उसी इलाके के रहने वाले हैं, इन्हीं की ये जमीनें हैं, तो इन जमीनों को किस तरह आबाद करना है और संभालना है वो खूब अच्छी तरह जानने वाले हैं, तो ये मुसलमानों के लिए बतौर काश्तकार के काम किया करेंगे और इससे मुमलिकत को आमदनी हासिल होगी भाई, और नीस खर्चा भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि काश्तकारी के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, बीज का इंतजाम करना पड़ेगा, बैलों का इंतजाम करना पड़ेगा, हल का इंतजाम करना पड़ेगा, और नीस काम करने के लिए बाज़ औक़ात और लोगों को भी उजरत पर लाना पड़ता है, लेकिन जब ये काश्तकारी करेंगे तो मुसलमान इन खर्चों से भी आजाद हो गए, तो बगैर खर्चों के ही आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लिहाजा इसके अंदर मुसलमानों का फायदा है भाई। और नीज ये भी याद रखना कि अगर मुजाहिदीन को हम यह जमीनें दे देंगे तो मुजाहिदीन तो जिहाद छोड़कर काश्तकारी में मसरूफ हो जाएंगे, तो लिहाजा इसलिए भी यह जमीनें मुजाहिदीन को देना मुनासिब नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अन नफी ही नजारन, और इसलिए क्योंकि इसके अंदर मसलहत है, ले अन नहुम कल अकारतिल आमिलतिल मुस्लिमीना। मैंने बतलाया आपको अकारा जमा है अकार की, और ये काश्तकार और किसान को कहते हैं। ले अन नहुम कल अकारती, इसलिए क्योंकि ये काश्तकारों की तरह होंगे, अल आमिलतिल मुस्लिमीना, जो मुसलमानों के लिए काम करेंगे, अल आलिमती बिवजूही जराती, जो जानने वाले होंगे ज़राअत के तरीकों को जी। ये मुसलमानों के लिए काम करेंगे और ज़राअत के तरीकों को जानने वाले होंगे भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, ले अन्नहुम कल अकारतिल आमिलतिल मुस्लिमीन अल आलिमति बि वुजूही ज़राअति, इसलिए क्योंकि ये ऐसे काश्तकार होंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेंगे और ज़राअत के तरीकों से वाकिफ होंगे। वल मुअनु मुर्तफ़ातुन, मुअन जमा है मुअनतुन की, ये बोझ को कहते हैं, बोझ और तकलीफ को, यानी मशक्कत वगैरह। यहां मुराद खर्चे हैं, मुराद क्या है, खर्चे, यानी क्योंकि काश्तकारी के लिए भी खर्चे चाहिए भाई। तो कहते हैं वल मुअनु मुर्तफ़ातुन, और खर्चे जो हैं वो भी उठ जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, बगैर खर्चों के आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं वल मुअनु मुर्तफ़ातुन, और खर्चे जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, मा मा अन्नहु यहज़ा बिही लदीन यातून मिन बादु, हजिया यहजा, भाई ज़ा के साथ है त्वाज़ा, हजिया यहजा का माना है किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को पा लेना। कहते हैं मा मा अन्नहु यहजा बिही, साथ इसके के हिस्सा हासिल कर लेंगे, अल्लदीन यातून मिन बादु, जो इसके बाद आएंगे, यानी बाद वाले मुसलमान भी इसके अंदर अपना हिस्सा हासिल करेंगे। तो कहते हैं मा मा अन्नहु यहजा बिही अल्लदीन यातून मिन बादु, साथ इसके के वो मुसलमान जो इनके बाद आएंगे वो भी इसमें से हिस्सा हासिल करेंगे। वल खराज व इन कल्ला हालन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह को जवाब दे रहे हैं, उन्होंने फरमाया था कि खराज तो बड़ा थोड़ा सा होता है, लिहाजा ये उन जमीनों का इवज नहीं हो सकता। तो उसका जवाब देंगे कि भाई खराज अगरचे इस वक्त थोड़ा है लेकिन नतीजे के एतबार से बड़ा है कि यह सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा भाई। तो कहते हैं वल खराज व इन कल्ला हालन, और खराज जो है वो अगरचे हाल के एतबार से थोड़ा है, यानी फिलहाल अगरचे थोड़ा है, फकत जल्ला मआलन, तो तहकीक वो बड़ा है, मआलन नतीजे के एतबार से, ली दवामी ही दायमी होने की वजह से, वह इन मन्ना अलैहिम बिर रिकाबी वल आराजी, और अगर इमाम ने उन लोगों पर एहसान किया, भाई यहां से साहिबे हिदायत ये बतला रहे हैं कि अगर इमाम जो है उन जमीनों पर उन्हीं कुफार को बरकरार रखता है तो काश्तकारी के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो उन्हीं के पास रहने दे, सारा कुछ उनसे छीन कर न ले आए भाई। अगर सारा कुछ छीन लिया उनसे तो फिर वो काश्तकारी कैसे करेंगे भाई। तो कहते हैं वह इन मन्ना अलैहिम बिर रिकाबी वल आराजी, और अगर इमाम ने उन पर एहसान किया रिकाब और जमीनों में, रिकाब में एहसान किया यानी उनको, यानी उनको गुलाम नहीं बनाया, उसी तरह जिम्मी बनाकर आजाद छोड़ दिया, और जमीनों के बारे में भी एहसान किया कि जमीनें उन्हीं के पास रहने दी और उन पर खराज मुकरर कर दिया। तो कहते हैं वह इन मन्ना अलैहिम बिर रिकाबी वल आराजी, और अगर इमाम ने उन पर एहसान किया गर्दनों और जमीनों के सिलसिले में, तो यदफाउ इलैहिम मिनल मनकूलाती, तो मनकूलात में से भी उनके हवाले कर दे, बिकदरी मा इतनी मिकदार, यतहय्यउ लहुमुल अमलु, के उनके लिए अमल करना मुमकिन हो जाए, इतनी चीजें उनके सुपुर्द कर दे कि उनके लिए काश्तकारी करना मुमकिन हो जाए। तहैया या तहैया के माने हैं तैयार होना, और इसी तरह मुमकिन होना, तो यहां इसका तर्जमा हम करेंगे मुमकिन होना। तो कहते हैं यदफाउ इलैहिम मिनल मनकूलाती, तो इमाम मनकूली चीजें उनके हवाले कर दे, बिकदरी मा इतनी मिकदार, कि यतहय्या उलहुमुल अमलु, कि उनके लिए अमल करना मुमकिन हो जाए, लिया खुरुजा अन हद दिल कराहती, ताकि ये कराहत की हद से निकल जाए। अगर इमाम उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ता तो ये तो मकरूह है भाई। तो इमाम काश्तकारी के जरूरी असबाब उनके लिए छोड़ दे ताकि कराहत की हद से निकल जाए। यह माना है लिया खुरुजा अन हद दिल कराहती, ताकि कराहत की हद से निकल जाए। आगे देखिए काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह हुआ फिल उसारा बिल खियारी, उसारा जमा है असीर की और इसमें हमजा पर जम्मा भी सही और फतहा भी सही। उसारा हमजा पर जम्मा है या असारा हमजा पर फतहा है, दोनों तरह सही है भाई। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह हुआ फिल उसारा बिल खियारी, और इमाम जो है कैदियों के बारे में उसको इख्तियार है, इन शाह कतलहुम अगर चाहे तो उनको कत्ल कर दे। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम कद कतला, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने भी कत्ल फरमाया। भाई रिवायात में आता है कि फतह मक्का के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को अमान दे दिया लेकिन चंद एक के कत्ल का हुक्म दिया। जैसे जैसे इब्ने खतल, इब्ने खतल ये एक शायर था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजब में और मजम्मत में अशआर कहता था भाई। तो जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया हर एक को हुजूर अमान देते चले जा रहे हैं, तो इस मौका पर कुछ मुसलमान आए कि या रसूल अल्लाह इब्ने खतल जो है वो बैतुल्ला के पर्दों से लिपटा हुआ है, बैतुल्ला के पर्दों के साथ लटक रहा है, तो हम उसका क्या करें। तो हुजूर ने फरमाया उसको कत्ल कर दो। तो मालूम हुआ कैदियों को कत्ल किया जा सकता है। तो कहते हैं लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम कद कतला, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने भी कत्ल फरमाया। वलिअन्न फीही हस्म मादतिल फसादी, और नीद इसलिए क्योंकि कत्ल के अंदर फसाद के मादे को काटना है। हसम यासिमु का माना काट देना, खत्म कर देना। वली अन्न फीही, और इसलिए क्योंकि कत्ल करने में हस्म मादतिल फसादी, फसाद के मादे को काट देना है, खत्म कर देना है। वह इन शाह अस्तरक्कहुम, और अगर इमाम चाहे तो इन कैदियों को गुलाम बना ले, इन कैदियों को गुलाम बना ले। तो कहते हैं वह इन शाह अस्तरक्कहुम, और अगर इमाम चाहे तो इनको गुलाम बना ले। लिअन्न फीही दफ़अ शर्रिहिम, इसलिए क्योंकि इसके अंदर इनके शर को दूर करना है। मा वुफूरिल मनफअति लिअहलिल इस्लामी, साथ नफे की कसरत के अहले इस्लाम के लिए। अगर इमाम इनको कत्ल करेगा तो इनका शर दूर हो जाएगा, और अगर इमाम इनको गुलाम बनाएगा तो इनका शर भी दूर हो गया, क्योंकि अब ये हरबी नहीं है बल्कि मुसलमानों के गुलाम हैं, तो इनका शर भी दूर हो गया और निर मुसलमानों को भी फायदा हासिल हो गया कि उनको गुलाम मिल गए। तो कहते हैं लिअन्न फीही दफ़अ शर्रिहिम, इसलिए क्योंकि गुलाम बनाने में उनके शर को दूर करना है। मा वुफूरिल मनफअति, साथ नफे के कसीर होने के। लिअहलिल इस्लामी, अहले इस्लाम के लिए, कि अहले इस्लाम के लिए नफा बढ़ गया भाई, नफा कसीर हो गया कि अब ये मुसलमानों की खिदमत करेंगे। वह इन शाह अतरकहुम अहरारन, और अगर इमाम चाहे तो इन कैदियों को आजाद ही छोड़ दे। जिम्मतन लिल मुस्लिमीना, मुसलमानों के लिए बतौर जिम्मी के, मुसलमानों के लिए बतौर जिम्मी के इनको आजाद ही छोड़ दे। तो कहते हैं वह इन शाह अतरकहुम अहरारन जिम्मतन लिल मुस्लिमीना, और अगर इमाम चाहे तो इनको आजाद ही छोड़ दे मुसलमानों के लिए बतौर जिम्मी के। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इराक वालों की जमीनें उन्हीं के पास रहने दी और उनको जिम्मी बना दिया। इल्ला फी मुशरिकिल अरबी वल मुर्तदीना, मगर मुशरिकीन अरब और मुर्तदीन जो हैं, जो लोग मुर्तद हो जाएं उनको गुलाम बनाने की या उनको छोड़ने की इजाजत नहीं है भाई। तो कहते हैं इल्ला फी मुशरिकिल अरबी, भाई फी मुशरिकिल अरबी असल में क्या था, फी मुशरिकीन अल अरबी, और फिर नून इजाफत की वजह से गिर गया। तो कहते हैं इल्ला फी मुशरिकिल अरबी वल मुर्तदीना, मगर अरब के जो मुशरिकीन हैं और जो मुर्तद हैं, यानी उसमें इमाम को इख्तियार नहीं होगा। बाकी कैदियों में तो इख्तियार है, क्योंकि वो गुलाम भी बना सकता है और वैसे भी आजाद छोड़ सकता है, लेकिन अरब के मुशरिकीन और जो मुर्तद हैं उनमें इमाम को इख्तियार नहीं है। अलामा नुबय्यिनु इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जो हम बयान करेंगे इंशा अल्लाह ताला, आगे बाबुल जिजिया में साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। वला यजूज अन यरुद्दहुम इला दारिल हर्बी, और इमाम के लिए यह जायज नहीं है कि इनको दारुल हर्ब वापस भेज दे। भाई ये मुशरिकीन अरब और मुर्तदीन की बात नहीं हो रही जो माकबल में बात चल रही थी, और कैदी जो हैं और जो कैदी मुसलमानों के हाथ आए हैं जिहाद के अंदर, उनमें इमाम को ये इजाजत नहीं है कि इनको वापस दारुल हर्ब जाने दे, इसलिए क्योंकि अगर ये वापस दारुल हर्ब जाएंगे तो ये तो फिर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आ जाएंगे भाई। तो कहते हैं वला यजूज अन यरुद्दहुम इला दारिल हर्बी, और इमाम के लिए जायज नहीं है कि इनको दारुल हर्ब वापस लौटा दे। लिअन्न फीही तक्वियतहुम अलल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि इसके अंदर इनको मुसलमानों के खिलाफ कुव्वत देना है। तो ये तो गोया दारुल हर्ब वालों को कुव्वत दी जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। तो कहते हैं लिअन्न फीही तक्वियतहुम अलल मुस्लिमीना, इसलिए क्योंकि इसके अंदर तो मुसलमानों के खिलाफ उनको कुव्वत देना है। फइन अस्लमू ला यक्तुलुहुम, अगर ये जो कैदी हैं ये मुसलमान हो जाते हैं फिर इमाम इनको कत्ल नहीं करवा सकता जी। वैसे तो इमाम को इख्तियार है, वो इन कैदियों को कत्ल कर सकता है, लेकिन अगर वो मुसलमान हो गए तो अब उनको कत्ल नहीं कर सकता। कहते हैं फइन अस्लमू ला यक्तुलुहुम, और अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर इमाम इनको कत्ल नहीं कर सकता। लिंदिफा शर बिदूनी ही, इसलिए क्योंकि कत्ल के बगैर ही शर दूर हो गया, इनका शर दूर हो गया, ये मुसलमान हो गए हैं, अब ये मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वलहू अन यस्तरिकहुम, और इमाम के लिए जायज है कि इनको गुलाम बना ले। भाई ये कुछ कैदी मुसलमान हो गए तो अब इमाम इनको कत्ल तो नहीं करवा सकता, लेकिन इनको गुलाम बना सकता है। भाई क्या वजह है, गुलाम क्यों बना सकते हैं, ये तो मुसलमान हो गया है। कहते हैं भाई ये कैदी बनने के बाद मुसलमान हुआ है, जब हमने इसको पकड़ा था ये हर्बी था, तो लिहाजा इसमें गुलामी का सबब पाया जा रहा है। हर्बी मुसलमानों के हाथ आ जाएं तो मुसलमान उनको गुलाम बना सकते हैं, तो जब हमने पकड़ा था ये उस वक्त हर्बी था, तो इसमें गुलामी का सबब मौजूद है। तो अब इस्लाम बेशक ले आया, लेकिन ये कैद होने के बाद इस्लाम लाया है, तो गुलामी का सबब अभी भी मौजूद है, लिहाजा इमाम इनको गुलाम बना सकता है। हां अगर ये पकड़े जाने से पहले मुसलमान हो जाएं तो फिर इस सूरत में इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलहू अन यस्तरिकहुम, और इमाम के लिए जायज है कि इनको गुलाम बना ले। तौफीरन लिल मनफाति बादन इकादि सबबिल मिल्की, तौफीरन लिल मनफाति, वफरा युवफिरु, तौफीर का माना है कसीर करना, बढ़ा देना। तौफीरन लिल मनफाति, फायदे को बढ़ाने के लिए, बादन इकादि सबबिल मिल्की, बाद उसके के मिल्कियत का सबब भी मुनाकिद हो चुका है, मिल्कियत का सबब भी मुनाकिद हो चुका है कि जब हमने इनको पकड़ा था ये हर भी थे, तो इनको गुलाम बनाएंगे तो फायदा बढ़ जाएगा मुसलमानों के लिए। तो ये माना है इमाम इनको गुलाम बना सकता है, तौफीरन लिल मनफाती, नफे को बढ़ाने के लिए, बाद अन इकादि सबब इल मिल्की, मिल्कियत का सबब मुनाकिद हो जाने के बाद, बिखिलाफी इस्लामिहिम कबल अल अख्जी, बखिलाफ इसके कि ये मुसलमान हो जाएं पकड़े जाने से पहले, लिअन्नहु लम यनअकिद सबबु बादु, क्योंकि उसके बाद तो सबब मुनाकिद नहीं हुआ, जब ये पकड़े जाने से पहले ही मुसलमान हो गए तो अब गुलाम बनाने का सबब नहीं पाया गया। गुलाम बनाने का सबब क्या था कि हर्बी होने की हालत में इनको पकड़ा जाए, और जब ये मुसलमान हो गए हैं तो आप गुलामी का सबब नहीं, लिहाजा इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यह माना है बिखिलाफी इस्लामिहिम कबल अल अख्जी, बखिलाफ इनके मुसलमान होने के पकड़े जाने से पहले, उस वक्त इनको गुलाम नहीं बना सकते। लिअन्नहु लम यनअकिद सबबु बादु, इसलिए क्योंकि उसके बाद तो गुलामी का सबब मुनअकिद नहीं हुआ। आगे देखिए भाई, वला युफादी बिल उसारा इंद अबी हनीफता रहिमहुल्लाह, वकाला युफादी बिहिम उसार अल मुस्लिमीन। भाई फादा युफादी मुफादात का माना है फिदिया लेकर कैदी को आजाद करना, यानी माल लेकर कैदी को छोड़ना, इसको भी फादा युफादी मुफादात कहते हैं। और इसी तरह अपने कैदियों की रिहाई के बदले में दुश्मन के कैदियों को आजाद करना, इसको भी मुफादात कहते हैं। और यहां यही माना मुराद है। तो कहते हैं वला युफादी बिल उसारा इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और इमाम जो है अपने कैदियों के बदले दुश्मन के कैदियों को आजाद नहीं कर सकता इमाम साहेब के नजदीक। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं युफादी बिहिम उसार अल मुस्लिमीना, कि इमाम जो है वो मुसलमान कैदियों के बदले में दुश्मन के कैदियों को आजाद कर सकता है। और भाई याद रखना, ये मतन के अंदर तो जिक्र हुआ कि इमाम साहब के नजदीक अपने कैदियों के बदले दुश्मन के कैदियों को छोड़ना ये इमाम के लिए जायज नहीं है, लेकिन सीरे कबीर में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम साहब की ज्यादा जाहिर रिवायत यही है कि इमाम अपने कैदियों के बदले दुश्मन के कैदियों को आजाद कर सकता है जी। इमाम साहब की ज्यादा जाहिर रिवायत यही है जो साहिबैन का मजहब है। मालूम हुआ यह हमारे तीनों अइम्मा का मजहब है भाई कि इमाम अपने कैदियों के बदले में दुश्मन के कैदियों को आजाद कर सकता है। तो कहते हैं वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं युफादी बिहिम उसार अल मुस्लिमीना, कि इमाम जो है मुसलमान कैदियों के बदले में दुश्मन के कैदियों को आजाद कर सकता है। वह हुआ कौलु शाफी रहिमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफी रहिमहुल्ला का भी। लिअन नफी ही तखलीस अल मुस्लिमी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुसलमान को छुड़ाना है। जब हम दुश्मन के कैदी को छोड़ेंगे तो वो हमारे कैदी को छोड़ देगा, तो देखो इसमें हमने एक मुसलमान को दुश्मन की कैद से छुड़ा लिया। तो कहते हैं लिअन नफी ही तखलीस अल मुस्लिमी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुसलमान को छुड़ाना है। वह हुआ औला मिन कत्लिल काफिरी अविल इंतिफाई बिही, और ये किसी काफिर को कत्ल करने या उससे फायदा उठाने के मुकाबले में बेहतर है। भाई एक सूरत यह है कि इमाम कैदी को कत्ल कर दे, एक सूरत यह है कि मुसलमान कैदी को गुलाम बना ले, और गुलाम बनाएगा तो मुसलमानों को फायदा होगा। लेकिन कैदी को कत्ल करने या उससे फायदा उठाने के बजाय बेहतर क्या है कि उसके जरिए मुसलमान कैदी को छुड़ा लिया जाए। भाई यह माना है, कहते हैं वह हुआ औला, और मुसलमान को छुड़ाना बेहतर है। मिन कत्ल काफिरी, काफिर को कत्ल करने के मुकाबले में। वल इंतफाई बिही, और काफिर से फायदा उठाने के मुकाबले में, यानी गुलाम बनाकर उससे फायदा उठाया जाए, इसके मुकाबले में मुसलमान को छुड़ाना बेहतर है। व लहू, इमाम साहब की दलील यह है अन नफी ही माउनत अल कफरती, कि इसके अंदर दुश्मन की मदद है। माउनत कहते हैं मदद को, कफरा जमा है काफिर की। तो कहते हैं वलहू, इमाम साहिब की दलील यह है कि नफी हिमाउनत अल कफरती, कि इसके अंदर काफिरों की मदद है, यानी अगर उनके कैदियों को हम छोड़ेंगे तो इससे तो काफिरों की मदद होगी। तो कहते हैं इसके अंदर काफिरों की मदद होगी। लिअन्नहु यऊदु हरबन अलैना, इसलिए क्योंकि वो हम पर दुश्मन बनकर लौटेगा। ये दुश्मन का कैदी जिसे हम आजाद करेंगे, ये कल को हमारे खिलाफ ही दुश्मन बनकर आएगा और हमारे साथ लड़ाई करेगा। तो कहते हैं लिअन्नहु यऊदु हरबन अलैना, मैंने आपको बतलाया था, अरबी में कहते हैं हुआ हरबुन अलैया, वो मेरा दुश्मन है। तो हरब के साथ अला का सिला लाते हैं और इसके माने दुश्मन के होते हैं। तो यहां भी इसी तरह है, लिअन्नहु यऊदु हरबन अलैना, इसलिए क्योंकि उनका ये कैदी हमारे खिलाफ दुश्मन बनकर लौटेगा। व दफ़ शर्र हिराबिही खैरुम मिन इस्तिनकाज़िल असीरिल मुस्लिमी। व दफ़ शर्र हिराबिही, हिराब हिराब का माना है जंग भाई। वदफ़ शर हिराबिही, और इस कैदी की जंग के शर को दूर करना खैरुन, वो बेहतर है। मिन इस्तिनकाज़िल असीरिल मुस्लिमी, मुसलमान कैदी को छुड़ाने के मुकाबले में जी। ये जो दुश्मन का कैदी है इसको कत्ल करना या इसको गुलाम बनाकर रखना वो बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से उसके जंग का और लड़ाई का शर दूर हो जाएगा। तो कहते हैं वदफ शर हिराबिही, और इस दुश्मन के कैदी की जंग के शर को दूर करना खैरुन, ये बेहतर है। मिन इस्तिनकाज़िल असीरिल मुस्लिमी, मुसलमान कैदी को छुड़ाने से। भाई साहिब हिदायत की फसीह बलीग इबारतें चल रही हैं, मैंने आपको बतलाया था कि अगर एक ही माना को साहिब हिदाया को दो तीन जगह जिक्र करना पड़े तो वह उमूमन हर एक के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ऊपर आया था लि अन्नफी तखलीस अल मुस्लिमी, इसमें मुसलमान को छुड़ाना है। अब दोबारा वही छुड़ाने के लिए अब इस्तिनकाज का लफ्ज ला रहे हैं साहिब हिदाया कि यह बेहतर है मिन इस्तिनकाज अल असीर अल मुस्लिमी, मुसलमान कैदी को छुड़ाने से। لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ, इसलिए क्योंकि मुसलमान कैदी जब उन्हीं के कब्जे में बाकी रहेगा, कानब तिला अनफी हकी ही, तो ये आजमाइश है उस मुसलमान कैदी के हक में। भाई यहां से साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि अगर मुसलमान कैदी उन्हीं के पास हम रहने दें तो उस बेचारे कैदी का नुकसान है, लेकिन वो नुकसान सिर्फ उसी कैदी का है। लेकिन अगर हम उन कुफार के कैदी को छोड़ेंगे इस मुसलमान कैदी के बदले में तो कुफार का ये कैदी कल हमारे साथ ही लड़ने के लिए आएगा, तो इसमें तमाम मुसलमानों का नुकसान है। तो एक सूरत में जरर खास है जब मुसलमान कैदी उनके पास ही रहे, और दूसरी सूरत में अगर मुसलमान कैदी छुड़ाते हैं तो फिर जरर आम है, तमाम मुसलमानों को नुकसान होगा कि वह कैदी कल हमारे खिलाफ लड़ने आ जाएगा। तो लिहाजा जरर आम से बचना औला है जरर खास के मुकाबले में, लिहाजा मुसलमान कैदी के बदले में उनके कैदी को आजाद नहीं किया जाएगा। तो यह माना है لأنه إذا بقي في أيديهم, इसलिए क्योंकि मुसलमान कैदी जब उनके कब्जे में बाकी रहेगा, كان ابتلاء في حقه, तो यह उसी मुसलमान कैदी के हक में आजमाइश है, غير مضاف إلينا, याद रखो أضاف يضيف إضافة, इसका एक माना है निस्बत करना, एक चीज की दूसरे की तरफ निस्बत करना, और इसी तरह अजाफा युजीफु इजाफतन का माना इजाफा करना और बढ़ाना भी है, किसी चीज में इजाफा करना और उसको बढ़ाना भी, और यहां यही माना मुराद है कि मुसलमान कैदी उनके पास रहेगा तो सिर्फ उसी का नुकसान है, यह नुकसान हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा, यानी आम मुसलमानों को इसका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उसी कैदी को नुकसान है। लेकिन उनके कैदी को अगर हम छोड़ेंगे तो इसका नुकसान तमाम मुसलमानों को होगा। तो यह माना है कान अब तिला अनफी हक ही, तो यह सिर्फ उस मुसलमान कैदी के हक में आजमाइश होगी, गैर मुजाफिन इलैना, हमारी तरफ यह नहीं बढ़ेगी, यह आजमाइश हमारी तरफ नहीं बढ़ेगी, हमें नहीं पहुंचेगी। वल इआनतु बिदफई असीरहिम इलैहिम, और उनकी मदद करना उनके कैदी को उनके हवाले करके, मुजाफुन इलैना, ये हमारी तरफ बढ़ेगा जी, ये इसका नुकसान हमारी तरफ बढ़ेगा, तमाम मुसलमानों को उसका नुकसान पहुंचेगा। बात समझ में आ गई, या यहां मुजाफुन का तर्जमा निस्बत के कर लें, बल्कि यही ज्यादा मुनासिब है कि यहां पर मुजाफुन का तर्जमा मनसूब होने के कर लें, इसलिए क्योंकि पीछे इआनत का जिक्र है। देखो वल इआनतु बिदफई असीरहिम इलैहिम, यह है मुबतदा, और मुजाफुन इलैना यह है खबर। तो तर्जमा सुनो, वल इआनतु बिदफई असीरहिम इलैहिम, और उनके कैदी को उनके हवाले करके उनकी मदद करना, मुजाफुन इलैना, ये हमारी तरह मंसूब होगा कि हमने उनकी मदद की है जी। तो यहां पर मुजाफुन का माना मंसूब होने के ही सही बनता है, दूसरा माना यहां सही नहीं बनता कि ये हमारी तरफ बढ़ेगा जी। क्योंकि मुब्तदा क्या है, इआनत, ये जो हमने उनकी मदद की है, उनका कैदी छोड़ा है, मुजाफुन इलैना, ये हमारी तरफ बढ़ेगी, क्या उनकी मदद बढ़कर हम तक पहुंचेगी, या ये जो हमने मदद की है इसकी निस्बत हमारी तरफ होगी, निस्बत हमारी तरफ होगी। बात समझ में आ गई, तो साहिब हिदाया की फसीह बलीग इबारतें चल रही हैं, पीछे भी मुजाफुन इलैना को जिक्र किया और फिर दोबारा भी मुजाफुन इलैना को जिक्र किया, लेकिन एक जगह मुजाफुन इलैना का माना है कि वो नुकसान हमारी तरफ बढ़ेगा, और दूसरी जगह मुजाफुन इलैह का माना यह है कि यह जो हमने मदद की है यह हमारी तरफ मंसूब होगी, कि यह जो हमने उनकी मदद की है, उनका कैदी छोड़ा है, यह मदद हमारी तरफ मंसूब होगी कि हमने उनकी मदद की है। बात समझ में आ गई, तो यह माना है वल इआनतु बिदफई असीरहिम इलैहिम, और उनके कैदी को उनके हवाले करने के जरिए जो मदद है, मुजाफुन इलैना, यह हमारी तरफ मंसूब होगी। आगे देखिए, अमल मुफादात बि मालिन याखुदुहु मिनहुम ला यजूजु फिल मशहूर मिन अल मज़हब लिमा बयन्ना। दूसरी सूरत कि कैदी को फिदिया लेकर आजाद किया जाए, मुसलमान कुफार से माल लेते हैं और उसके बदले में उनके कैदी को आजाद कर देते हैं। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि अहनाफ के मजहब में जो मशहूर रिवायत है उसके मुताबिक माल लेकर दुश्मन के कैदी को आजाद करना जायज नहीं है। तो कहते हैं अमल मुफादातु बिमालिन, और बाकी दुश्मन के कैदी को आजाद करना ऐसे माल के बदले में, या खुजुहु मिनहुम, जो इमाम उनसे ले ले, इमाम उनसे माल लेकर उनके कैदी को आजाद कर दे, तो ला यजूजू, तो ये जायज नहीं है। फिल मशहूरी, उसमें जो के मशहूर है, मिनल मजहबी यानी के मजहब, यानी वो जो अहनाफ का मजहब में जो मशहूर रिवायत और मशहूर कौल है उसके मुताबिक ये जायज नहीं है। फिर तर्जमा देख लीजिए, ला यजूजु फिल मशहूर मिनल मजहबी, अहनाफ के मजहब में जो मशहूर है उसके मुताबिक ये जायज नहीं है। लिमा बयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि हम दुश्मन के कैदी को छोड़ेंगे तो ये तो कल हमारे ही खिलाफ लड़ने आ जाएगा, तो ये तो गोया हम उनकी मदद कर रहे हैं। वफी सियर कबीरी, और सियर कबीर में है कि अन्नहु ला बासा बिही, के माल लेकर आजाद करने में भी कोई हरज नहीं है। इजा कान बिल मुस्लिमीन हाजतुन, जब मुसलमानों को हाजत हो, अगर मुसलमानों को माल की हाजत है तो फिर दुश्मन के कैदियों को माल लेकर आजाद करना जायज है। इस्तिदलालम भी उसारा बदरीन, बदर के कैदियों से इस्तिदलाल करते हुए सियर कबीर में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों को माल की हाजत है तो माल लेकर दुश्मन के कैदियों को छोड़ने में कोई हरज नहीं है। और वो इस्तिदलाल फरमाते हैं बदर के कैदियों से कि उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर छोड़ दिया था। याद रखो, बदर के अंदर मुसलमानों ने दुश्मन के 70 आदमियों को, उनके बड़े बड़े सरदारों को कैद कर लिया, और फिर सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया इन कैदियों के बारे में। तो हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और इसी तरह अक्सर सहाबा की राय भी यही थी। जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि नहीं, इन सब को कत्ल कर दिया जाए, हर शख्स अपने रिश्तेदार को कत्ल करे, हुजूर अलैहि सलाम अपने रिश्तेदार को कत्ल करें, अली अपने रिश्तेदार को कत्ल करें, मैं अपने रिश्तेदार को कत्ल करूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि जलाली तबीयत रखते थे और कुफर के खिलाफ बहुत सख्त थे, तो उन्होंने यह मशवरा दिया। लेकिन बहरहाल अक्सर सहाबा की यही राय थी कि इन कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर यही फैसला फरमाया। तो इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयतें नाजिल हुई भाई, ये हाशिए के अंदर दी हुई हैं, इन पर नजर रखिए भाई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा कान ली नबीन अन यकून लहू असरा, कि किसी पैगंबर के मुनासिब नहीं है कि उसके पास कैदी रहें, हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ी, यहां तक कि वो जमीन में खूब अच्छी तरह खून बहा दे। तुरीदून आरज़त दुनिया, तुम लोग दुनियावी साजो सामान चाहते हो, वल्लाहु युरीदुल आखिरता, और अल्लाह आखिरत चाहते हैं, वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह जबरदस्त कुव्वत वाले हिकमत वाले हैं। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबका, अगर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ हुक्म मुकदम न हो चुका होता, लमस्सकुम फीमा अखस्तुम अदाबुन अजीम, तो अलबत्ता तुमको पहुंचता उस बात की वजह से जो तुमने इख्तियार की है, अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब यानी बड़ी सजा जी। अगर अल्लाह की तरफ से पहले फैसला ना हो चुका होता तो तुम्हारे इस बात को इख्तियार करने की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम्हें सख्त सजा पहुंचती। अगर अल्लाह की तरफ से पहले फैसला न हो चुका होता, इससे क्या मुराद है? तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें इशारा है अल्लाह ताला के उस कौल की तरफ जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जब तक तुम में ये पैगंबर मौजूद हैं मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। तो यहां भी उसी की तरफ इशारा है कि यह बात तो अल्लाह की नाराजगी की थी, लेकिन अल्लाह ने सजा इसलिए नहीं दी क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में मौजूद हैं भाई। जबकि बाजों ने कहा कि इसके जरिए इशारा है इस बात की तरफ कि अगर अल्लाह की तरफ से यह मुकद्दर ना होता कि इन कुफार में से भी बाज लोग बाद में मुसलमान हो जाएंगे, तो अगर अल्लाह की तरफ से यह फैसला ना हो चुका होता तो इस बात की वजह से तुम्हें सख्त सजा मिलती। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं फकुलू मिम्मा गनीम तुम हलालन तय्यबा, बस तुम खाओ उसमें से जो तुम्हें गनीमत मिली है हलालन तय्यबन बतौर पाकीजा हलाल के, यानी ये गनीमत जो तुम्हें मिली है ये तुम्हारे लिए पाकीजा और हलाल है, तुम इसको खा सकते हो। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाले और निहायत मेहरबान हैं। तो देखो अगरचे ये बात अल्लाह के गजब का बाइस थी लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों के लिए इस माल को खाना हलाल फरमा दिया और उसको पाकीजा हलाल माल करार दे दिया कि फकुलू मिम्मा गनीम तुम हलालन तय्यबा, कि वो गनीमत जो तुमने हासिल की है उसे बतौर पाकीजा माल के खाओ। तो अल्लाह ने उस माल को मुसलमानों के लिए हलाल फरमा दिया। तो अल्लाह की तरफ से ये आयात नाजिल हुई तो हुजूर अलैह सलाम रोने लग पड़े और तमाम सहाबा भी रो रहे हैं और हुजूर अलैह सलाम फरमाने लगे अगर अल्लाह का आजाब नाजिल होता तो उमर और साद इब्ने मुआज के अलावा और कोई ना बचता। मालूम हुआ हज़रत साद इब्ने मुआज जो कबीले औस के सरदार थे उनकी भी यही राय थी भाई। तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाने लगे कि अगर अल्लाह का आजाब नाजिल होता तो हम में से सिर्फ उमर और साद इब्ने मुआज ही बचते भाई। तो मालूम हुआ कि इस मामले में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय हक थी भाई। और इससे एक और बात भी मालूम हो गई कि पैगंबर से भी इज्तिहादी खता हो सकती है लेकिन वो इस इज्तिहादी खता पर बरकरार नहीं रहता बल्कि अल्लाह की तरफ से फौरन ही हक को जाहिर कर दिया जाता है भाई। तो बहरहाल अल्लाह ने गजब के बावजूद मुसलमानों को इसकी इजाजत दे दी भाई। मालूम हुआ मुसलमानों को हाजत हो तो फिदिया लेकर दुश्मन के कैदी को छोड़ा जा सकता है। तो यह माना है इस्तिदलालम भी उसारा बदरीन, बदर के कैदियों से इस्तिदलाल करते हुए वलव काना असलमल असीर फी अदीना भाई। सूरत यह है कि वह जो दुश्मन के कैदी हमने पकड़े थे उनमें से एक कैदी मुसलमान हो गया तो क्या इस मुसलमान कैदी के बदले में दुश्मन से हम अपने कैदी छुड़वा सकते हैं? कहते नहीं, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। आप जिसको छुड़वा रहे हैं वो भी मुसलमान है और जिसको हवाले करेंगे वो भी मुसलमान है भाई। हां अलबत्ता ये जो कैदी मुसलमानों के पास है और मुसलमान हो गया है अगर ये खुद इस पर राजी है और उसको अपने इस्लाम पर इत्मीनान है कि कुफार इसको दोबारा काफिर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जायज है भाई। तो कहते हैं वलव काना असलमल असीर फी अदीना, और अगर कोई कैदी मुसलमान हो गया हमारे कब्जे में ला युफादा बि मुस्लिमिन असीरिन फी अदीहिम, तो इस मुसलमान कैदी को फिदिये में नहीं दिया जाएगा उस मुसलमान कैदी के बदले में जो उनके कब्जे में है। ले अन्नहु ला युफीदु, इसलिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। इल्ला इदा ताबत नफ्सुहु बिही, मगर यह कि जब उसकी अपनी जात इस पर राजी हो, जब ये कैदी जो उनके हवाले किया जा रहा है जब वो खुद इस पर खुश है और राजी है फिर इस तरह किया जा सकता है। तो कहते हैं इल्ला इदा ताबत नफ्सुहु बिही, मगर ये कि जब खुद ये इस पर खुश और राजी हो, वह हुआ मामूनुन अला इस्लामी ही, और नीज वो अपने इस्लाम पर भी मामून हो, इसको अपने इस्लाम पर भी इत्मीनान हो कि कुफार इसे दोबारा काफिर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर जायज है। आगे देखिए काला वला यजूजुल मन्नु अलैहिम, और उन कैदियों पर एहसान करना जायज नहीं है। कैदियों पर एहसान करना जायज नहीं है यानी यह कि कैदियों को वैसे ही मुफ्त में छोड़ दिया जाए, उनके बदले ना तो मुसलमान कैदियों को आजाद करवाया है और ना उनके बदले में माल लिया है, तो याद रखो ये जायज नहीं है। इस तरह से उन पर एहसान करना जायज नहीं है। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यजूजुल मन्नु अलैहिम, और उन पर एहसान करना जायज नहीं है। ऐ अलल उसारा, यानी उन कैदियों पर। हुम जमीर किसको राजे है? उसारा को भाई। काल तो साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यजूजुल मन्नु अलैहिम, और इन पर एहसान जायज नहीं है। ऐ अलल उसारा, यानी कैदियों पर। खिलाफन लिशाफिई रहिमहुल्ला, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्ला के। फइन्नहु यकूलु, क्योंकि वो फरमाते हैं मन्ना रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, कि हुजूर अलैह सलाम ने एहसान फरमाया था अला बाजिल उसारा यौम बदरिन यौम बदर वाले दिन बाज कैदियों पर, गज़वाए बदर के कुछ कैदियों पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहसान फरमाया था कि उनको बगैर इवज के ही आजाद कर दिया था। तो मालूम हुआ बगैर इवज के भी कैदी को आजाद करना जायज है। यह माना है फइन्नहु यकूलु, क्योंकि वो फरमाते हैं मन्ना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहसान फरमाया अला बाज़िल उसारा यौम बदरिन यौम बदर वाले दिन बाज कैदियों पर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहसान फरमाया यौम बदर वाले दिन बाज कैदियों पर और बगैर इवज के ही उनको आजाद कर दिया। वलाना और हमारी दलील जो है कौलुहु तआला, अल्लाह ताला का यह कौल है फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम कि तुम लोग मुशरिकीन को कत्ल करो जहां तुम उन्हें पालो। तो देखो इस आयत के अंदर मुतलकन मुशरिकीन के कत्ल का हुक्म दिया जा रहा है, मालूम हुआ मुशरिकीन के साथ एहसान की इजाजत नहीं है, इमाम उनको वैसे एहसान के तौर पर आजाद नहीं कर सकता। तो कहते हैं वल्लाना कौलुहु तआला और हमारी दलील जो है अल्लाह ताला का यह कौल है फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम कि तुम लोग मुशरिकीन को कत्ल करो जहां तुम उन्हें पालो। वली अन्नहु बिल असरी वल कसरी यसबुतु हक्कुल इस्तिरकाकी फीह, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि मुशरिकीन के कैदियों को एहसान करते हुए वैसे ही बगैर इवज के आजाद करना जायज नहीं है। कहते हैं वली अन्नहु बिल असरी, असर भाई हमजा और सीन है, असरा यासिरु असरन का माना है कैदी बनाना, और कसर भाई काफ है दो नुक्तों वाला और सीन है, कसरा यकसिरु कसरन का माना है मगलूब करना जी। कसरा यकसिरु कसरन का क्या माना है? मगलूब करना। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं वली अन्नहु बिल असरी वल कसरी, और इसलिए क्योंकि कैदी बनाने और मगलूब करने की वजह से यस्बुतु हक्कुल इस्तिरकाकी फीही, उसके अंदर गुलाम बनाने का हक साबित हो चुका है। जब हरबी पर हमने गलबा पा लिया है और उसको कैद कर लिया है तो अब उसको गुलाम बनाने का हक साबित हो चुका है। जब हमने एक हरबी को पकड़ा है तो उसको गुलाम बनाया जा सकता है, उसके अंदर गुलामी का हक साबित हो गया है। यह माना है वली अन्नहु बिल असरी वल कसरी यसबुतु हक्कुल इस्तिरकाकी फीही, और इसलिए क्योंकि हरबी के अंदर कैदी बनाने और उसको मगलूब करने की वजह से उसको गुलाम बनाने का हक साबित हो चुका है। फला यजूज इसकातुहु, लिहाजा इस हक को साकित करना जायज नहीं है बगैर मनफातिन व इवज़िन, बगैर किसी नफे और इवज के। जब वो हरबी जिसको हमने कैद किया है जब उसके अंदर गुलामी का हक साबित हो चुका है तो इस हक को बगैर नफे के और बगैर इवज के बातिल करना और साकित करना सही नहीं है। यह माना है फला यजूजु इसकातुहु बगैर मनफातिन व इवज़िन, लिहाजा इस हक को साकित करना बगैर किसी नफे और इवज के ये जायज नहीं है। वमा रवाहु मनसूखुम बिमा तलौना, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया वो मनसूख है इस आयत की वजह से जो हमने तिलावत की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि गज़वाए बदर में बास कैदियों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बगैर इवज के वैसे ही एहसान करते हुए आजाद किया था। तो हम जवाब देते हैं कि वो हदीस जो है ये इस आयत की वजह से मनसूख है। ये जो आयत हमने दलील के तौर पर जिक्र की फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम कि मुशरिकीन को कत्ल कर दो जहां कहीं भी तुम उनको पालो, तो यह आयत बाद में नाजिल हुई है तो इसने उस हुक्म को मनसूख कर दिया, क्योंकि इस आयत के अंदर मुतलकन मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म है, मालूम हुआ उन पर एहसान करते हुए उन्हें आजाद नहीं किया जा सकता। तो यह माना है वमा रवाहु मनसूखुम बिमा तलौना, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया वो मनसूख है बिमा तलौना उस आयत की वजह से जो हमने तिलावत की। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बेहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।